أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير منين. الهنا تشمل المداوات بالتقوى. پرسکون زندگی گزارنے کے راز کے حوالے سے ہماری گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں پہنچ رہی ہے، لیکن آغاز گفتگو میں آج کی لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک ایکسکیوز بار بار بکن ناز ہے ہماری گردن پر، تھوڑی سی 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی. آپ کو اندازہ ہے کراچی اتنا پیارا شہر ہے، آپ کہیں بھی پھنس جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ ٹریفک جام ہے تو پھر آپ اس کو نکل کے بھاگ نہیں سکتے. اس وجہ سے بہرحال وہ معذرت چاہتی ہوں تاخیر ہونے کی وجہ سے. ہم یہاں پر پچھلی دفعہ پہنچے تھے، خلاصہ 2 جملوں میں کروں جہاں پر میں نے گفتگو کو چھوڑا تھا. گرچہ گفتگو ہے اختتام کو دوسرا کتا تھا، لیکن یہ جملے جو میں کہنا چاہتی تھی لیکن نہیں کہہ پائی کہ آج کا میڈیا ہمیں ذمہ داری سے فرار سکھاتا ہے ہر رشتے کے بعد. یعنی میں بیٹی ہوں تو آپ خود دیکھتی ہیں بعض اوقات کے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زمانے لگ گئے جب بچیاں ماں باپ کی خوشی میں قربان ہو جایا کرتی تھیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ میری کسی سے مومنہ سے بات بھی ہو رہی تھی تو کہنے کہ جو لوگ قربانیاں دیتے تھے خدا کی خاطر یا والدین کی خاطر، خدا نے انہیں بھاگوان میں قرار دیا ہے. یعنی جن لوگوں نے واقعی خدا کی خاطر کمپرومائز کیا تو اللہ کسی کو بھاگ نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے یہ سوچ کر کے خدا پسند نہیں کرتا کہ میں والدین کو اذیت دوں اور تھوڑا سا صبر کر لیا، اس کو شاید حالات تلخ ہو جائیں، معاشرے کی سختیوں کو سہنا پڑے. لیکن آفٹر سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کیسز آ جاتی ہیں برعکس ان لوگوں کے جو دوسروں کی خوشیوں پر اپنی، یعنی دوسروں کی خوشیوں کی قبروں پر اپنا تاج محل تعمیر کرتے ہیں. وہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں رہتے. اب بیٹی کی حیثیت سے ہو، بہن کی حیثیت سے ہو، ماں کی حیثیت سے ہو، زوجہ کی حیثیت سے ہو، اب دیکھیں معاشرہ اب میڈیا کو سکھاتا ہے. یعنی آج کی ماں کے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ لے کر بیٹھے اور تربیت اولاد کے حوالے سے، وظائف ایک اچھی بہو ہونے کی حیثیت سے، اچھی بھابھی ہونے کی حیثیت سے، اچھی بیٹی ہونے کی حیثیت سے، ہر جگہ پر ایک ہی سوچ ہے، میری زندگی ہے، یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہوں جیوں، میں میری مرضی جیسے دل چاہے گا ویسے گزاروں گا، آپ کو اس سے کیا. یعنی ایک چھوٹے چھوٹے سے سائلنٹ میسیجز کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے سے خاموش پیغامات کے ذریعے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی ایک اشتہار کی طرف، حالانکہ بہت ہی نامناسب انسان درسوں میں اشتہاروں کی مثالیں دینے کی، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. پالے پیلے جی دے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس دنیا میں کیڑے میں کھا جائیں گے اور اس کے بعد جتنا مزہ آئے گا جب پولیس رات روڈ پہ اٹکے ہوئے ہیں اور ہم ڈنڈے کھا رہے ہیں، دنیا کو ہم نے کھا لے پیلے جی لے کر لیا. اچھا ہمیں بڑوں کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتا ہے. آپ کو سوچیے جو ایک جو میں نے ابھی پڑھا اشتہار میں، اس میں وہ یوں یوں کرتا ہے، بچپن سے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے کام سے سختی سے منع کرتے ہیں. میڈیا ایک چیز سکھاتا ہے، ایک چیز سے بڑے منع کرتے ہیں، بچے میڈیا کو لے لیتے ہیں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ٹی وی بچے کی سیکنڈ مدر ہے، لیکن اب مجھے کبھی لگتا ہے کہ پہلی ماں سے زیادہ اس ماں کی حیثیت ہو گئی ہے. آپ ایک چیز 10 دفعہ سمجھائیں مثال کے طور پہ، اس میڈیا کو بس ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ مدر جو ہے وہ فرسٹ مدر پر حاوی ہے. اب اس کے پازیٹیو ویز بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میڈیا ہمیشہ آپ کو نیگیٹو وے میں لے جاتا ہے، بلکہ میرا خیال ہے آج کے نارمل سے ذاکرہ کے لیے، ایک نارمل سے مدرسہ کے لیے بہت ہی فائدہ دے رہی ہے. اگر ہم ایک حدیث کو پرانے زمانے میں ڈھونڈنا چاہتے تھے تو سبوں کے سب سے ڈھونڈاتے تھے، پھر کہیں جا کے پتا چلتا تھا اس کتاب میں حدیث ہے یا نہیں ہے. لیکن اب 3D سسٹم نے، ملٹی میڈیا نے کتنا کام آسان کر دیا. اسی طرح سے بچے، آپ انہیں حضرت یوسف کی داستان سنا سنا کے ہلکان ہو گئے، نہیں سمجھ میں آئے. یوداسف دیکھی کسر کر سمجھ میں آ گئی. بغل ایک مولانا کا ممبر تھے، کہتے ہیں حضرت یوسف تو بچہ نیچے سے کہتے ہیں یوسف نہیں یوداسف، حضرت ابراہیم، خلیل الرحمان. حالانکہ مس کانسیپٹ سے کچھ معاشرے کے اندر ان چیزوں کی وجہ سے پھیلتے ہیں. میں نے اس دن کسی درس میں اشارہ بھی کیا، حضرت ابراہیم والی جو بنائی ہے انہوں نے فلم، اس میں حضرت اسماعیل کے چہرے میں داڑھی ہے اور حضرت اسماعیل 22-23 سال کے نوجوان لگتے ہیں. حالانکہ جب حضرت اسماعیل کے حلق پر قبضہ رکھا گیا تھا تو معروف روایتوں نے اسے 13 سال کا سن تھا. یعنی کچھ مس کانسیپٹ پھیلتے ہیں. میڈیا کے فائدے بھی ہیں، میڈیا کے نقصانات بھی ہیں، میرا موضوع میڈیا نہیں ہے. جبکہ ہمارے آئمہ کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری انسان کا اصلی جوہر ہے. میری اور آپ کی ویلیو کیا ہے؟ جتنا میرے نال آپ میں احساس ذمہ داری بڑھتا چلا جائے گا ऑटोमेटिकली मेरी और आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जैसे जैसे एहसास जिम्मेदारी रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, वैसे वैसे मैं और आप डी वैल्यू होते जाएंगे। अब यहाँ पर एक रिवायत को, रिवायत है हदीयतु शिया के पेज नंबर 292 पर, अमीर मोमिनीन के अलैहि सलातु व सलाम, अमीर मोमिनीन इंसान के जिस्म की 6 कैफियात और रूह की 6 कैफियात को बयान कर, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं इंसान के जिस्म की और रूह की 6 कैफियात है। ऑप्शन नंबर 1, या इंसान सो रहा है हालत ख्वाब में है, यह इंसान हालत बेदारी में है मसलन, लेकिन कुछ कभी कभी मैं कुर्बान हो जाऊँ वाला कुछ बीसी कैफियत जो होती है, जैसे क्लास में ऐसे ऐसे तो आप मुझे सो रहे हैं, नहीं वजू है अल्हम्दुलिल्लाह जाग रही हैं, हाँ ये क्या कह रही थी, कुछ कह रही थी, ये बीस की तीसरी कैफियत है, हालत सेहत है, हालत बीमारी है वाला मैं कुर्बान हो जाऊँ। हमारे खवातीन का एक गिरोह है खाने पीने के हमेशा सेहतमंद है, अरे छोड़ो बीमारियों को दफा करो, वरना तो खा पी के मजा, अरे आंटी आपको शुगर है ना लेता गुलाब जामुन, छोड़ो रहने दो इस निगोड़ वाली बीमारी का, सारे नाम मत लिया करो, है तो अब तो ये जान तो सिमट गई है, खाने पीने की दफा आपका दिन त्यौहार है, काम कह दो कोई तो कहीं शुगर ने दम ही नहीं छोड़ा भैया, करना चाहते कर नहीं पाते, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा किसी कैफियत में रहते हैं, हालत सेहत है हालत बीमारी है, हालत मौत है हालत हयात है, यानी या मैं जिंदा हूँ या मैं मरीगी। अच्छा फिजिकली एतबार से रावी कहते हैं कि मैंने अलबत्ता मैंने हदीयत शिया में सिर्फ कैफियत को देखा, इस रिवायत को जब किसी आलिम रब्बानी के मुंह से सुना था तो उन्होंने कहा कि रावी कहते हैं मौला जो तो फिदा मैं आपका कुर्बान हो जाऊँ, आप मुझे बताएं जिस्म की कैफियत का एहसास हो जाता है रूह की कैफियत का कैसे, कि मैं सोचना चाहती हूँ कि मेरी रूह जिंदा है या मरी हुई, सो रही है या जाग रही है, सेहत के आलम में है या बीमारी के आलम में। तो इमाम ने फरमाया रूह की हालत है, रूह की हयात क्या है, रूह की हयात इल्म है, जिस तरह से जिस्म के अंदर, अब ये मेरे अल्फाज हैं अमीर मोमिनीन की रिवायत वहाँ रुक जाती है, जिस तरह से जिस्म के अंदर कैसे पता चलता है मैं जिंदा हूँ आप जिंदा है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से, धड़कनों के और नब्जों की रफ्तो आमद से, अगर मेरे पास इल्म है और इल्म के अंदर एक सर्कुलेशन है इसमें मेरी रूह जिंदा है, और अगर मैं जहालत की पस्ती में गिर गई हूँ मेरी रूह मर गई है। फिर दूसरी कैफियत कहा रूह की बीमारी क्या है, मसल मेरी जिसम मतलब खुदा ना आता हमें से किसी को कमर का दर्द हो, सबसे ज्यादा राइज दर्द खवातीन के दरमियान कमर का दर्द है, कमर का दर्द है आपको पता चल रहा है, अच्छा मेरी रूह बीमार है मुझे कैसे पता चलेगा, अमीर मोमिनीन फरमाते हैं रूह की बीमारी शक है, कुछ लोग आप कैसे पाए जाएंगे, ओ खुदाया मैंने देखा है यू पॉइंट उठाए हुए हैं और टहलते टहलते फिर रहे हैं, आप इनसे कहें कि बैठ जाए तो कहेंगी गीली हुए हैं गद्दे पे बैठ जाए, बच्चों वाला घर नजिस होगा, अच्छा आपने खुद ही से नजिस कर दिया, मैंने अभी मुहर्रमुल हराम में एक मजलिस पढ़ी अपने रिलेटिव्स में, मैंने उनसे कहा अल्लाहुम्मा अख्रिजनी मिन ज़ुलुमातिल वहम वअख्रिजनी मिन नूरिल फहम, मंदिर में कितनी दफा ये मुताले की दुआ पढ़ते हैं कि खुदाए वहम की जुल्मतों से तारीखों से निकाल दे, वहम ही मारे हुए हमें हर चीज में ऊंचे ऊंचे से चल रहे हैं, हर किसी को नजीस समझता है, किसी को अच्छा किसी को अपने से ज्यादा नादीन समझते हैं, मदरसे में आने के बाद ये बीमारी जरूर लग जाती है, आए आए जाए शुक्र अल्लाह मेरे चाहे उसे तलाश नहीं दिया, यानी मैंने देखा लोगों को सही भी शौक है कि हमें बैठ के दूसरे को तनकीद कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे बड़ा सुप्रीम क्वालिटी का जाहिर है, अल्लाह ने कुछ हमें देखा तो हमें यहाँ बुलाया ना, कुब्बे के नीचे बुलाया बोला, आपने गुंबद के नीचे बुलाया बोला, आपने अपनी जरी दिखाई बोला, आपने अपनी ज्यारत पे चढ़ देखा, पास किसी खातून को देखा बेचारी का हिजाब नाफिस है बेचारी का वजू गलत है, कैसे कैसे जाहिर लोग क्या कर, ये गुरूर है। और मदरसे में आने के बाद बबल आगम भी सही के रानी की तरफ से अखलाक में आप फातुल्लाह में कहते तुम आयतुल्लाह बनोगे, तुम्हारा नफ्स आयतुल्लाह रुजवा हो जाएगा, हकीकत है उनके तेहरान से लाइव एक जमाने में ईरानी चैनल्स पे दरसे अखलाक आया करते थे, हकीकत है मदरसे में आते थे शुरू में तो ऐसा लगता है हम जाहिल हैं, चौथे पांचवे साल में लगता है ये आकाश इंसान से इतना सा इनकम है पर नाम कौन सा किसी से कम है, शहीदा बिल्कुल उदा क्या थी हाय हाय जो तो हमारे पास इल्म है, ये सारे की सारी हमारे आगे चोले देखती हैं सब सब हमारे दिल में है इल्म लदुनी अनाउस मिला है मालिक, लेकिन वाकई शक करते हैं दूसरों को कम इल्म समझते हैं, शक करते हैं दूसरों को बोल नहीं पता नहीं घर में इतनी दीनदार है भी नहीं है, कितनी जल्दी जल्दी हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं मुकद्दर से अदबेली ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान शक करता है, रूह की सेहत यकीन है, इंसान यकीन के मंजिल पर पहुंच जाए, अलबत्त यकीन की भी कैटेगरीज है, कुरान की आयात की तरफ हमें जाना नहीं चाहती वरना मैं खुद इसके ऊपर मुफसल बोल सकती हूँ, हजरत इब्राहिम का यकीन जब परवरदिगार आलम से कहा काला यानी हजरत इब्राहिम का तस्किरा करते हैं कुरान सूरह मुबारक बकरा में, इस काला मेरा बही कई बार तुम जिन मौका परवरदिगार से हजरत इब्राहिम ने बहुत लाड से, ऐसा बहुत ही लाड नहीं हुए मकसद है उसूल है। आगे मोहसिन इब्राहिम ने कहा है मिसाली हीरो तौहीद का हजरत इब्राहिम, काला गलत तो उम्मीद काला कई बार तुम जिन मौका हजरत इब्राहिम ने कहा था तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, एक बस्ती के करीब से गुजरे और पानी में देखा कि एक धड़ है, मैंने इसकी तफसीर रिवाई को देखा एक जगह पर, और उस धड़ के अंदर आधा हिस्सा उस जिस्म का पानी के अंदर है आधा खुश्की के अंदर है। अच्छा खुश्की के जानवर भी उस लाश को खा रहे हैं और पानी के जानवर भी उस लाश को खा रहे हैं, दिल में ख्याल है ये सब खा पी के पलट जाएंगे पानी वाले पानी में खुश्की वाले खुश्की में, ये वापिस कैसे जमा किया जाएगा और कैसे कब्र के दिन कयामत के दिन निकाला जाएगा। कई बार तुम्हें मौका खाना अवलम तू है, जैसे खुदा ने कहा परवरदिगार कैसे मुर्दों को जिंदा करेगा, कहा अवलम तो भी यहाँ बहुत ही प्यारा नुकता मेरे उस्ताद ने मेरे लिए नकल किया, कहा कि यहाँ पर अवलम तो मैं क्या तुम ईमान नहीं लाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के ईमान के बारे में यकीन रखते हैं फिर भी इनकार वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं। माए बैठी है हमारे दरमियान एक बहुत ही मामूली मिसाल, बाद आपके घर में बाद बच्चे ऐसे होते होंगे जो स्कूल कॉलेज से 1:30-2 बजे आ जाते होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो 3:15-3 बजे आते होंगे, डिपेंड करते हैं ना स्कूल की या कॉलेज की टाइमिंग पर। आपका बच्चा तो 1:30 बजे आया है, डट के उसने खाना वाना खा लिया, पेट भर गया, आप भी सुखी हो गए कि चलो एक तो फारिग हुआ, अपने कमरे में गया, छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई आए, दोबारा आपने दस्तरखान लगाया, दोबारा आकर बैठ गए, आपके मेरे मुंह से भी ये जुमला निकला तुमने खाया नहीं था अवलम तो मैं, ये वो जुमला है परवरदिगार इब्राहिम की यकीन को समझता है, ऐसा नहीं ना जुमला इब्राहिम को परवरदिगार नहीं जानता ये जानना चाहते, अवलम तो मिन कौल अवला वला दिन यक मिनना कल्बी इत्मिनान यकीन, ये कैफियत ही अलग है, कहा कि रूह की सेहत यकीन की कैफियत है, इंसान को यकीन हो बहुत सारी चीजों पर यकीन, आगे हम कुछ यकीन के मनाजिर को आपके कदमों में पेश भी करेंगे। कहा और रूह की नींद उसकी गफलत है, आज की सबसे बड़ी गफलत, आज की माँ को शायद एहसास जिम्मेदारी नहीं उसे क्या करना है, यानी आज का सबसे बड़ा इशू मेरा ख्याल सबसे ज्यादा जहां पर हम तबाही फैला रहे हैं ना वो हमारे बच्चे हैं, ये वो गोल्स है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें बड़ी अच्छी मिसाल दी थी, कहा कि मैं एक साहब नकल करते हैं कि मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरा बच्चा लॉन के अंदर बैठा हुआ, बड़ा सा पाइप होता है जिसे लॉन को पानी दिया जाता है वो बाल्टी के अंदर डालकर बैठा, और जैसे ही मैं पहुंचता हूँ दौड़ के मुझे लिपट जाकर कहते हैं डैडी डैडी आप मेरे लिए इस बाल्टी को भर दे, तो कहा ये कौन सा काम है लाओ 2 मिनट में भर देता हूँ। मैंने जैसे उस शावर का उस लड़के को खोला तो मैंने देखा बाल्टी भर रही थी, जरा खड़ी हुआ तो देखा बाल्टी के पहनने में सुराख है, सारा पानी तो बाल्टी के पहनने से निकल रहा है। देखिए हमारी बाल्टियों के पहनों में भी कहीं ना कहीं सुराख है, हमारी तबीयत कहाँ तबाह हुई, कितनी माएँ ऐसी हैं जिनको मैं नाजी तौर पर जानती हूँ मुझसे शिकायत करती हैं जहरा यकीन करें, बच्चों से कहते हैं तहज्जुद पढ़ो फजर नहीं पढ़ने में तैयार, बच्चों से कहते हैं वो फैला पढ़ो कहते मगर ही पढ़े ना लाख शुक्र करें फलानी बच्चे तो असल नमाज ही नहीं पढ़ते नाउज़ुबिल्लाह अंदर, हम उन्हें खुरासान भेजने के चक्कर में होते हैं वो डॉ देंगे, अब हमारे रोजगार में खुरासान के बाद एक बिस्तर का आदमी है जहाँ वैसे तो वो बड़े पैमाने पर मरकज भेजा होता है लेकिन शाम में बच्चे खेल कूद रहे थे, हमने बच्चे को खुरासान भेजा बाहर ला के बिस्तर पाल में गुल्ली डंडा खेल रहा है कि अम्मा मुतमईन है बच्चा बैठ के सुबह को दूस पड़ रहा है, पता नहीं वहाँ बच्चा दूसरे बच्चों से आखापाई कर रहा है लड़ रहा है और बॉल के ऊपर झगड़ा खड़ा कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डेफिसिटी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, गफलत है, हम अपनी उन जिम्मेदारियों से गाफिल है। कहा कि रूह की नींद तुम्हारी रूह सो रही है रूह गाफिल है, इसके बाद कहा कि रूह की बेदारी इसकी निगहबानी है, रूह की बेदारी इसकी निगहबानी है, मुझे चेक रखना चाहिए लाइक अ ट्रैफिक सार्जेंट, आप समझते कभी अगर ये ट्रैफिक के जो टुल्ले हैं दोनों आंखों को एक साइड से हिला दें गाड़ियां किस तरीके से एक दूसरे से टकरा दें, एक घर में जिम्मेदार मोमिना की जिम्मेदारी उस ट्रैफिक के पुलिस से भी ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए कि जरा सा चूक जाए आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे घर से जो हराम हो रहे ना वो पलट कर हमारी जात का कर, बच्चों के गुनाह हैं बड़ों के गुनाह हैं, अब इतना सवाब रखा है आपने तो माशाल्लाह मुझे मेरे में आया था कि आप सबसे सीनियर ग्रुप है मदरसा तो कायम का, आपने ऐसी बेदाजा हदीसें सुनी होगी बकौल ईरानी के बूशतुन पुरस आपके कान भरे हुए, एक घर की औरत पानी का काम करती है जितने कपड़े पहनते हैं इतना सवाब मिलता है, इसका ये मतलब नहीं कि लड़के खुले से हो गए गलत के ममालिक इस वक्त पानी की वो बाहर के मुल्कों में भेजने पर पाबंदी लगा चुके हैं, ईरान मीठा पानी लेकर पेट्रोल देने पर तैयार है, आखिरी थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के साथ होने वाली है, और हमारी औरतें सुबह उठती है घूसता वजू करने में नलके खुले छोड़ देती है अल्लाह के आदरे पर। बीबी जी जब आप कदम में लिटाई जाएंगी तो आपके सूचना वजू का स्वभाव उससे मिलेगा, जब आप इसराफ के अजाब से निकल जाएंगी तब आपको कुछ मिलने वाला है। कुछ लोग एक उससे जुमा करके आधा टैंकर खाली कर देते, लेकिन हम पानी का काम करते हैं बेदार सा स्वभाव। हमने झाड़ू लगाया घर के अंदर, मासी की छुट्टी हो गई, रात को सोते हुए बसोसा भी तो यही होता है ना, अरे सुबह मासी ना आए तो क्या होगा, मासी ना आए तो दवा को काम करें जैसे मासी करती है, चाचा घरों के काम करती है। लेकिन हमने झाड़ू लगाया, जितने घर के गुबार के जर्रे मेरे लिबास पर पड़े, मेरी नेकियां लिखी गई, मेरे गुनाह माफ किए गए, इतना सवाब इतना सवाब इतना सवाब क्यों? जिनके रुतबे हैं सिवा उनका सिवा मुश्किल है। अगर आप सेंसिटिव पोस्ट पे बैठी है ना, आपके साथ तो मैं बैंक एक क्लर्क को शायद 10,000 रुपए पे करता हूँ, लेकिन अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को 1,00,000 रुपए पे कर रहा है, लेकिन उसकी 1,00,000 रुपए की तनख्वाह और उसका सारा होगा एक जगह गुजारा सी 19-20 कर रहा है। आपने देखा होगा बैंकर्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कितने सेंसिटिव होते हैं अपने अकाउंट की नस्बत। आप उनसे कहिए 1-0 से क्या फर्क पड़ता है, कहते हैं भैया इस 1-0 पे नौकरी का दारोमदार है। मैं और आप गाफिल हैं अपनी बात, मसलन आप नहीं, मसलन मैं अपनी अगर किसी जिम्मेदारी से गाफिल हूँ तो यकीनी सी बात है मुझे समझ लेना चाहिए कि उस दुनिया में फिर ऐसी कोई खुशखबरियाँ नहीं है जैसी खुशखबरियाँ मैं यहाँ पर दिल लगाकर बैठी हूँ। लेकिन खुलासा इंसान का असल जौहर उसका एहसास है जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के अंदर भी सही जिम्मेदारी को तय कर लेना। जब आपने सही जिम्मेदारी तय कर ली, जब मेरी पिछली गुफ्तगू के मुताबिक हमने जिंदगी के अंदर एक मकसद हयात रख लिया, मकसद हयात बहुत सारे इंसान बहुत सारे काम कर सकता है। आप देखिए असल मुसलमानों को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख लें, बहुत काबिल एहतराम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम देखते हैं काफिरों के अंदर भी इस चीज का इश्क पाया जाता है। मदर टेरेसा क्या थी? मुसलमान औरत नहीं थी, लेकिन भारत से इंसानियत की बहुत खिदमत थी, हाफिलत आई रिवायतों की रूसे खुलासा करो अपनी जुबान में तो उसे जहन्नुम में इस तरह से रखा जाएगा कि जहन्नुम के शोरों की लपक उस तक नहीं पहुंचेगी, उस सखावत की वजह से जो उसने अपने कबीले में रखे अपने तराबरों में दिखाई। या वो बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत सारी अच्छी सिफात जो इस्लाम पसंद करता है ऐसे लोगों में पाई जाती है, बरक्स बात सिफात जो मुसलमानों में पाई जानी चाहिए नहीं पाई जाती। हमने जिंदगी के अंदर एक मकसद रख लिया, अच्छा इस मकसद के लिए हमें आखिर तक खड़े रहने डर जाने। जब तुम लोगों को रिवायत का खुलासा है कि जब तुम देखो लोग दुनिया की खातिर डट गए हैं तो अपने दीन की खातिर डट जाओ। कितनी तेजी से हम आपने देखे दुनिया की खातिर हम जिस्मानी दर्द भी सहते हैं, ये ब्यूटी पार्लर में हम क्या करते हैं? मैं बड़ी बेसकूनी बेतकल्लुफी के साथ ही जुमला कह सकती हूँ, मेरी जगह अगर मेल डिसाइडर हो तो बेचारा जुर्रत नहीं करेगा ऐसी बात कहने की। मैं और आप ब्यूटी पार्लर में अगर बैठे दर्द भी सहते हैं, हर मरहले में एक दर्द से एक्ट्रेस बनवाने लगते हैं तो दर्द सहते हैं, पैसे भी देते हैं, दर्द भी सहते हैं, टाइम भी लगाते हैं, क्यों? क्योंकि स्मार्ट लगे हर मरे, बड़ी प्यारी कर रही थी, कहाँ से टी शर्ट करवाया था? उसने कहा अरे 450 रुपये में करती है वो तो बड़ी तौबा सफार ऐसी है वैसी है, हमारे मोहल्ले में भी नया नया खोला है। हाँ ये नया नया खोलने की बड़ी सस्ती होती है, मैंने क्लाइंट बनाने होते हैं 10 मिनट फेशियल पे तब थोड़ा, 10 मिनट ब्यूटी पार्लर पे तब थोड़ा, उसके बाद हम भी एक विधा उसी के पास चले जाएंगे, हम भी उसका फायदा उठाएंगे। सोना में लोग स्विमिंग में लोग जिम्स में, कराची में इतने जिम्स किसके पास होते पर चल रहे हैं खवातीन? सिर्फ इसके कि इंसान दुनिया की खातिर डट जाना चाहता है। आपने कभी मुआशरे में किसी ऐसी माँ को नहीं देखा? बेटे का मेडिकल कॉलेज का एडमिशन डिले है, ड्यू है, मेडिकल कॉलेज वाले मिसाल देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या मांगते हैं, फॉर कोई ऐसा हैंडसम किस्म का कॉलेज है 80,000 रुपये मांग रहे हैं, महंगे पैसे, बाद उसका हाथ से चूड़ियाँ निकाल कर औरतें रख देते। बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ तुम ही चूड़ियाँ नहीं कुर्बानी देते हम दुनिया की खातिर? शौहर ने कारोबार नया शुरू करना है, पिछले में खुदा ना आपका घाटा हो गया, कोई बात नहीं अल्लाह ने आपको सलामत रखे जेवर की क्या बात है, अल्लाह आपका कारोबार जम जाएगा आप दोबारा बनवा देंगे। भाई को जरूरत पड़ी, बाप को जरूरत पड़ी, बेटे को जरूरत पड़ी, शौहर को जरूरत पड़ी, हम तो कुर्बानी का बकरा बन गए पॉजिटिवली। लेकिन दुख की बात नहीं, जब दीन की बात आती है हमारा अपना हौसला नहीं बढ़ता, जब दीन की बात आती है हमारा अपना, मिसाल के तौर पर मैं सोचूं कैलकुलेशन करके बैठू रोजों की कफारे और खुदा ना खासा मेरी गजल है 25,000 रुपये रोजों के कफारे आ रहे हैं, मैं उस वक्त भी तो करूँ एक चूड़ी निकाल के दे दूँ भाई ये कब्र में मैं कैसे सहूंगी इन सारे कफारों को, दुनिया में करके जाए अपने हिसाब से। हम आखरत के लिए डरते नहीं, आखरत के लिए मुतजलजल रहते हैं, डरते रहते हैं। मजे की बात है दुनिया के लिए तो अल्लाह मेरे कुछ प्रोमिसेस भी नहीं किए, आखरत के लिए किए हैं। वल्लदीना जाहदुना पीना वल्लदीना जाहदु पीना तनहदीना सुबलना, जो हमारे रास्ते पर चलेगा उसे रास्ते को आखिर तक दिखाएंगे। कुरान की आयात है जिस तरह से मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टेबल्स याद करवाए जाते हैं बच्चों को, दो का पहाड़ा, एक बच्चे के टीचर ने कहा दो का पहाड़ा याद है, पहाड़ा तो नहीं याद, उसकी टोन याद है तो ये कैफियत है। तो टेबल्स याद करवाए जाते हैं, दो का, चार का, ढाई का, तीन का, 20 तक के टेबल्स सिलेबस में एक जमाने में याद कराए जाते हैं। इसी तरह से कुछ कुरान के फॉर्मूलाज है, कुछ बेसिक टेबल्स हैं, आप उन्हें सीखिए, आपने पूरा दिन सीख लिया। वो मिसाल आपने मेंबर से हजार दफा सुनी होगी कि जब एक अरब बद्दू मदीने का ना रहने वाला एक अराबी जो शहर मदीना में नहीं था, पैगंबर की खिदमत में आया, कहा यार रसूल खुदा आप मुझे इस्लाम सिखाइए। पैगंबर ने एक सहाबी को, एक कंपेनियन को हैंड ओवर करके कहा इसे दीन सिखाओ, और वो उन आयात तक पहुंचा, फमन जामा मिसकाल ज़र्रत फ़ैलन जरा, फमन जामा मिसकाल ज़र्रत इंशाअल्लाह जरा, कहा दैट इनफ, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो इस शख्स ने आकर पैगंबर की खिदमत में शिकायत की, कहा यार रसूल खुदा कितना अजूज था, कितना जज्बात इंसान था। कहा ये मत कहो जज्बात था, आया था तो आराबी था, पढ़ता है फरजा फकीहन, फकीह बन के पढ़ता है, बेस को सीख लिया, बुनियादी चीजों को सीख लिया। जब आप बुनियादी चीजें सीख लेते हैं खुद बहुत इमारत अच्छी बन जाती है। हम इस्लाम के बुनियादी कवानी, अब मैं आपकी खिदमत में एक दूसरी कैफियत को बयान करना चाहती हूँ, दूसरा मरहला। एक रिवायत औसानी खलीली वे सबा के नाम से आगे हाशिम रसूली महलाती की किताब चहल हदीस की रिवायत है। हदीस बहुत मशहूर है, लेकिन मैं इस रिवायत को आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि जनाब सलमान फारसी से रिवायत को नकल किया गया है कि पैगंबर खुदा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर ने मुझे सात चीजों की वसीयत की, औसानी खलीली सब मेरे खलील ने मुझे सात चीजों की तौसीया किया, तलकीन की और ताकीद की है कि इन्हें किसी हाल में तर्क ना करूं। पहली चीज मुझे ताकीद की है अपने से नीचे वालों को देखो। मैं डील की किताब पढ़ रही थी, दोस्त बनाइए रसूख कमाइए टाइप की किताब है, दो किताबें मेरे पास दी थी। उसमें कहते हैं एक शख्स बहुत ही नाम लिखा अपनी जिंदगी से, उसे हमेशा लगता था अंधेरी है अंधेरी है अंधेरी है, बेचारे का कारोबार ठप हो गया, कर्ज का घर तक पहुंच गए, घर बिकने की नौबत आ गई, बीवी तलाक लेने की बातें करने लग गई, बच्चे लगे जितर बितर हो गए। कहा मैं एक मतलब अपने घर से बाहर निकला, मैंने देखा एक शख्स को, उसके बाद मेरे अंदर जिंदगी के किरण उड़ गई। कहा मैंने देखा ट्रेन की पटरी पर एक शख्स से अपने आप को घसीटता हुआ, व्हील चेयर टाइप एक चीज है, अब देखा होगा यहाँ पर भी बात कर छोटे से वो होते हैं जिसके ऊपर खुदा खासा माजूर अफरा। कहा मैंने उसे देखा किस तरह से अपने आप को घसीट कर इस पटरी को क्रॉस कर रहा है, एहसास हुआ परवरदिगार तेरा शुक्र मेरे पास पैर हैं। हम ये देखते हैं उसके पास गाड़ी है, वो देखते हैं उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके पास लैंड क्रूजर है, उसके पास कोरोना है, हम ये नहीं देखते बहुत सारे ऐसे जिनके पास पैर नहीं है। कितना बड़ा अल्लाह का एहसास जिस्मानी एतबार से अपने से नीचे वाले। हम औरतें हम तो खुद खाल नहीं मर जाती, अरे हाय कैसी खूबसूरत है, अल्लाह ने तुझे मुझे ऐसा क्यों बनाया। बकर वाले सारे बुजुर्गवार अगर उसने किराती के दरसे तस्वीर में कहते हैं हुस्न हमेशा खुश नसीबी नहीं होता, हजरत यूसुफ की सबसे बड़ी मुसीबत उनका हुस्न था, पल्लू से मालूम की बात दिल को भी लगती थी इसलिए। लेकिन हकीकत है हम औरतें तो इसी चक्कर में रहते ना, भावा जैसी लाएं चंदे आफ्ताब चंदे माहताब, भैया आपका भाई क्या है, जरा पहले उसकी तो तस्वीर दिखाएं फिर बाद में आगे चंदे आफ्ताब की बात करिएगा। बेटा बेचारा दैश है, अब मैंने भी बारह पच्चीस मरहले में है कि मैं भी सोचूं बहू चाहिए हो किस्म की। कल मेरी दोपहर में शादी का मिलाप था तो मैंने कहा हम बहू लाते हैं 16 साल की तो रखते हैं 60 साल की, ये रोटियां पकाएंगे ऐसी अपना वक्त भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लक्ष्य। मैंने कहा कुछ रोटियां तो ऐसी जो डाइनिंग टेबल अब जाती नहीं है, पीछे घुसी लिखो वही रहेंगे, मैं कुछ कुछ करके डाल दी चली हुई रोटी कौन खाएगा। हम अपना वक्त कितनी तेजी से भूल जाते हैं ना, मुझे किसी ने फोन करके कहा आटा कैसे गूंथते हैं, मैंने घर क्या मतलब देखे कि आज के मेरे पानी भी डाल दिया नमक भी डाल दिया है, वो पता नहीं चीज पीटियाँ बन गई हैं, मैंने कहा कि बैन कर लो और चुपचाप पी जा। लेकिन हकीकत आप सोचिए हम यानी हुस्न जमाल में अपने से ऊंचे तबके को, पैसे के एतबार से अपने से ऊंचे तबके को, अगर खुदा ने मुझे औलाद की नियमत से महरूम कर दिया, मैं उन लोगों को देखूंगी कि जिनके माशाल्लाह सेहतमंद तवाना खूबसूरत चाको चौहद बच्चे हैं, उनको देखू जिनके नॉर्मल बच्चे मेंटली रिटार्डेड कम नहीं है, मार्च में माए सुबह के नहलाती है 22 साल के बेटों, कितना बड़ा दर्द है, माए मुंह धुलाती है, माए खाना खिलाती है, माए कपड़े बदलती है, वो वक्त जब बाप को बेटे के सहारे की जरूरत है बाप उसे गोद में उठाकर उसकी व्हीलचेयर को धक्के दे। नहीं देखे हमने ऐसे लोग अपने से नीचे वाले को देखे परवरदिगारा। अच्छा अगर खुदा ना से ऐसे औलाद हमें मिल जाते तो हम कहते थे तो बेऔलाद भले थे, रोज के मरने से हर एक दवा का मरना चाहता, रोज के रोने से एक दवा का रोना चाहता। अपने से नीचे वालों को पैसे के एतबार से अपने से नीचे वालों को हम देखते हमारे यूपीएस नहीं है, हमारे सोलह में बहुत थोड़ी सी तंगो तारीख सी गली है, उसमें बहुत ही जीप से क्वार्टर डेढ़ कमरे के घर बने हैं, मैं कभी कभी सोचती हूँ उस गली में भी तो लोग रहते होंगे, उनके यहाँ तो लाइट जाती होगी। हमारे दोनों दिल की तरफ से खुले घर है, हवा आती है, रोशनी आती है, यूपीएस खराब होते तो वहां मेला है। हमारे गम पता है किस तरह के माइक्रोवेव की बेग टूट गए, दो दिन होते रहेंगे, हाय 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 हाय। उनको देखो जिनका माइक्रोवेव नहीं, खैर माइक्रोवेव तो ना होने चाहिए। मैंने कल उसके ऊपर एक नुकसान दे ब्लेजर, उसके ऊपर एक आर्टिकल पड़ा है और देखकर हैरान रह गई। दुनिया के आसाइशात पर हम कितनी तेजी से मरते हैं, उसका लेवल मुझसे ज्यादा, उसके कपड़े मुझसे ज्यादा, उसके बच्चे ज्यादा अच्छे, उसका शौहर ऐसा है, उसका ये है। उनको देखो जी, उन औरतों को जाकर इन्हीं फोन में देखे जिनके शौहरों का तेजाब गिरा देते, उन औरतों को देखे जिन्हें कारोबारी के चक्कर में मार दिया जाता है, उन्हें देखे हिंदुस्तान में जाकर जिन्हें सती कर दिया जाता है। अल्लाह के एहसान मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं। जब इंसान देखता है, जब इंसान देखता है कि उससे बदतर कैफियत में लोग, अच्छा खुश भी है बाद लोग खुश भी है, परवरदिगार तेरा एहसान तुमने मुझे इस काबिल समझा तो मुझे एक एबनॉर्मल बच्चा दिया जिसको मैं दिन रात किसी परवरिश करूं और सवाब और अजर के अलावा दिन रात तेरा शुक्र अदा करूं। आप खुद सोचिए ना, एक औलाद का ना होना एक दुख है। ऐसे बच्चे के साथ जैसी मैं बात माँ को जानती हूँ जाती तौर पर, मैं सोचती दिन में कितनी दफा जीती और कितनी दफा मरती होगी। वो उसके पास से उठकर नहीं जा सकती, जहरा अपने आप को दीवारों पे, जब मेरे बच्चों को फिर साथ में वो अपने आप को दीवारों से मारता है, ऐसे वक्त में कोई ना कोई उसके पास हो जो उसे हैंडल कर सके। अल्लाह तेरा एहसान, कितनी मामूली मामूली सी चीजें हैं। अगर जरा सा शौहर बेतनाई करते हैं तो कहते हैं इनको हमारी परवाह नहीं है। वो भी है जो अपनी अपनी और बीवियों की कमाई दूसरी गलत किस्म की औरतों पर उड़ा कर आ जाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र परवा दिखा, इतनी ज्यादा तो देते हम संडे मदरसा में आए, इतना इतना इख्तियार तो देते कि हम दीन पर अमल करें। मेरे और आपके सर पर चादरें हमारे घर वालों की सपोर्ट है। अगर वो कहीं या मैं या ये चादर को हम कहाँ चले जाएंगे। है ऐसी मोमिनात, ऐसी मोमिनात की भी कमी नहीं है जिनके जो हमने नमाज ना उसे मिलन तारीख सुम्मा ना उसे मिलन तारीख आराम से पढ़ने नहीं देते, अपने से नीचे वालों को देने जाए। मैं आपको एक चलती फिरती इबरत बताऊं और अगला ऑप्शन बताऊं पैगंबर की रिवायत का, हमारे हम में से बात के घर में यकीनन माफी आती है। चलता फिरता इबरत का इससे हाल है, चुनाव कराती है हमारा मुंह देखने के लिए, हमारा दिल हो तो हमसे चाय की ऑफर कर दे, दिल ना हो तो नहीं पी रहे हम नाश्ता कर रहे हैं, ठीक है हमारी मर्जी। हमारे डब्ल्यू सी धोने, हमारे कमोड धोने, हमारे बच्चे उसके फेरे में पहुंचे पर चल रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। कभी कभी मैं इसीलिए माओ से रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे साथ तरबियत और आते रहते उनके बच्चों से ये पहुंचा दे, जरा वो फेरे जरा किसी को बैठ नहीं रखने देते, जूते बाहर मैंने पहुंचा लगाया बेटा, क्यों रोज माफी लगाती है। अच्छा मेरा तो एक बच्चा कहता है उसको आदत है, मैंने कहा तुम्हें भी करवाओ रोज तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी। लेकिन आप खुद सोचिए एक इबरत हमारे घरों तक चल कर आती है, हमने कहते परवरदिगार तेरा शुक्र, मैं सुबह उठकर जाकर दूसरों का इस तरह से चेहरा नहीं देखती। घर के कामों का लोड बढ़ जाते ना तो हम काबेला कर दे, हालांकि ठीक है एक वक्त नहीं शायद घर में कोई भी गम गुजार ना, कुछ अर्सा आप हौसले के साथ गुजार ले सब गम गुजार हो जाएंगे, लोग आपकी मगर सांस नहीं लेंगे। वो डॉक्टर आदि हुसैन दैनी साहब की किताब मैंने कनीज बन जाओ गुलाम बना लो, बहुत ही बेहतरीन जुमला है सारी किताब का। हम कम्प्रोमाइज अगर करें, अच्छा मजे की बात है हम दुनिया के भी करते हैं, अल्लाह के भी कुछ ये करते हैं, अल्लाह को धोखा देने के चक्कर में। वो लदीना यकदूना, वो लदीना यकदूना, नहीं कुरान की आयत है सूरह बकरा की, कि वो लोग जो धोखा देते हैं अल्लाह को सारे बारे में ईमान घुमा या कहूंगा इधर सब हकीकत का भी नफ्स धोखा देते हैं। खुलासा अपनी जिंदगी में ये बिल्डिंगों के चौकीदार, आपके कंपाउंड के चौकीदार, आप इन लोगों को देखें। आप सिग्नल से गुजरते हुए कभी नहीं देखा रात में कुछ लोग छिछलते हुए सो रहे थे। मैं कभी कभी खड़ी होती हूँ और सोचती हूँ कभी रात में लेट नाइट निकलना हो किसी के साथ तो सोचती हूँ कि घर में अगर एक बच्चा सो रहा होता है, एक बड़ा सो रहा होता है, बेटा सो रहा है, और सो रहा है, भाई सो रहा है, सास सो रहे, दूसरे सो रहे, आहिस्ता सबको नहीं सो रहे, लाइटें बंद कर दो, रोशनी नींद में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दो, शोर मत करो नींद में डिस्टर्बेंस होती है। ये पां 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 क्या लगाया हुआ है नजर नहीं आ रहा, उनके सराहने हम गौरव देते हैं सोते हैं सो रहे हो, कभी नहीं आपने सिग्नल पे किसी शख्स को सड़कों के किनारे चेहरे कराची में सोए हुए देखा। हम अपने बच्चे की जरा सी खुशी नहीं पूरी कर सकते, हम उसे मिसाल के तौर पर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में भी लेके जा सकते। आप इस शहर कराची में 150 ऐसे मरकज हैं जहां दिन रात लंगर चलता है। इस शहर कराची में छीपा ईदी फलानी ढुकानी 150 ऐसी जगह जहाँ मुफ्त में खाना तकसीम होता है, वहां पे कभी बच्चों को बैठे हुए देखा। हम अल्लाह का एहसान है, जैसे भी हमारी हैसियत है हमारा बच्चा एक चीज अम्मा ये कद्दू नहीं खाने, अच्छा कोई बात नहीं आमले बना, अच्छा कोई बात नहीं फ्रीजर में कबाब पड़े हैं वो कर देती हूँ, वो बच्चे उन बच्चों में नफा होता होगा। बहुत देर पहले डॉन में एक आर्टिकल आया था, एक बच्चे ऐसे जो कतरा सुनने वाले उसके सामने ना रखा, उस इंटरव्यू लेने वाले जर्नलिस्ट ने पूछा तुम्हें पता ये क्या था, हाँ बहुत देर पहले कुएं पर मिला था आया था। कितना अल्लाह का एहसान है, हम इन सारी मुसीबतों से बचे हैं, हम महंगाई क्यों होते हैं? अनार महंगे हो गए, 4 किलो आते थे अब 1 किलो आते हैं, किलो आता था अब 1 आता है। ये चीज हम सीजन में एक दफा तो एक बार खाते हैं ना। अल्लाह तेरा एहसान बहुत सारे ऐसे हैं जो कूड़े के ढेर से उठाया हुआ खाते हैं। मैंने पिछले साल यानी सेकेंड लास्ट ईयर हज के मौके पर किसी को देखा बिना में, जो पाकिस्तानी बेचारे बैतुल हराम के साथ पी थी, जो गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ गए थे, उस वक्त मेरी रूम लगत रही। मैंने कहा हमारे पैकेट वाले बराबर खाना खाया थे लोग, इस शख्स को कूड़े में से उठाकर खाने की नौबत है। ज़ियोफिर रहमान हाजी खुदा का मेहमान है। आप सोचिए इंसान जब उसे देखे जो नीचे वालों है, दूसरा जुमला इसके ऑपोजिट। पैगंबर ने सलमान से कहा मुझे ताकीद की है ये अपने से ऊपर वालों को ना देखूं। इंसान ना शुक्रा हो जाता। मेरे पास अगर अपार्टमेंट है, किसी के पास बिल्डर है, मुझे लगी वाह कितना हवादार है, तुम्हें तो दिन में रोशनी की जरूरत नहीं है, देखो हर तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन है। ऐसे ऐसे को देखना मैं अपनी नेमत हकीर लगने लग जाती हूँ। स्पेशली खवातीन जिन्हें बहुत लत होती है बैठ कर अपने शौहरों की इतनी फजीलतें बयान करने की, इतनी फजीलतें बयान करने की, कुछ ना कुछ सतह में ऐसी होती है जिनकी शौहर के साथ अलबल चल रही होती है, हम उनके छोरों को हवा देते हैं। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से एक घर टूटते हुए देखा है। एक सर्कल में एक खातून की हर वक्त की आदत थी, वो अपने शौहर को बहुत ही पता नहीं क्या चीज समझती थी, नाउजुबिल्लाह मासूमीन के बराबर पहुंचाने के चक्कर में रहती थी। एक छोटे कमजोर दिल की खातून थी, मैंने देखा उनका घर टूट गया। असल घर टूटने के अंदर बुनियाद वो खातून थी। ये तो सवाल ये करते हैं, ये आप चुपचाप आराम से नहीं कह सकती थी, अल्लाह का नाम नहीं कह सकते? यहाँ बुराइयां करते रहते ससुराल वालों की बैठे, यहाँ अच्छाइयां करते रहते अपने बेटे वालों की। मैंने कहीं बड़ा प्यारा जुमला पड़ा था, बेटे का तो कुत्ता भी अच्छा होता है, ससुराल की तो बकरी भी बुरी लगती है, जब मैं नहीं करती है तो ये कहती है। हमारे पास तीसरा कोई टॉपिक नहीं है। हॉट इशूज क्या है हमारी खवातीन के? कहीं वैन में आ रही है जा रही है, कैसी बातें कर रही है, मेरी मनहूस ना हर दूसरे कभी ना जाती है, अपने घर तो चैन ही नहीं है भैया, इनकी तो सास को भी इनकी बनवा दी, हम तो कहीं जाए तो हमारे सास को तो ग्रांड चिल हो जाती है। जो लगेगी अच्छा, अगर इस मौजू पे नहीं बोलेंगे तो कहेंगे मेरे भाई छोड़ इतना रखते हैं, अभी ईद पर ये लेकर दिया। मैंने कहा भैया अब तो गर्मियाँ आने वाली है, तुम्हारे तो हर घर में ए सी लगा गई, यकीन करो ऐसे भाई अल्लाह सबको दे। रात को सोने से पहले स्प्रिट लगा कर गए ना उसके दुकान के बंदे, ऐसा भाई पैसा फलाना ढिकाना जोश होगी। मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में कोई ऐसी खातून जो मेके वालों की बुराई करती है, ससुराल वालों की अच्छाई करती है। इस तरह की बातों से क्या होता है, कोई ना कोई हमारे सर्कल में ऐसा होता है जिसका दिल कमजोर होता है, ये हमारी बात तो उसकी जिंदगी का असरअंदाज होती है। पता हम तो डूबे हैं सर, हम तुमको भी ले डूबे, हमने कसम खाएंगे नहीं, जन्नत में जाना तुम्हारे बगैर कैसे जाएंगे, वहां टाइम कैसे पास करेंगे, तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। ऐसी बात है, अपने ऊपर हम को मत देखे, रब तो आमद ही कम रखे इंसान। हत्ता बात बता, देखिए दो बहनें हैं एक साथ ब्याही गई, एक के शौहर ने मिट्टी में हाथ डाला सोना हो गया, एक के शौहर ने सोने में हाथ डाला मिट्टी हो गया। अब ये दोनों बैठती हैं तो चूड़ियों का तकाबुल हो रहा होता है। कल मेरी एक पड़ोसन मुझे कहेंगी हाय लाबाजी कितने कपड़े बनवाती हैं फलानी साहिबा, हम तो इन कपड़ों में मेरे तो फट जाते, मैं तो मासी को देने के काबिल नहीं हूँ, हालांकि उनके हस्बैंड ज्वेलर हैं। मैंने कहा इनका ये हाल है तो बाकी सबको तो आप टट्ठे को बढ़ा रहे ना, कुछ नहीं किया जा सकता। अपने छोकर वालों को देखते हैं हमेशा इंसान मुंह के बल जाकर किसी ऐसे खड्डे में गिरता है जहां से कोई निकालने वाला नहीं मिलता। तीसरा जुमला मुझे ताकीद की है कि फोकला से मोहब्बत करूं और उनके नजदीक रहूं। हमारे यहाँ मेहमानों की कैटेगरीज है, एक मेहमान पानी की गिलास वाला है, या ऐसे आलू चावल टाइप का मेहमान है, हमारे जैसा है, जैसा हमारा स्टैंडर्ड है वैसा ही है। एक मेहमान शरबत वाला है, एक मेहमान के लिए टैंक बनता है, एक मेहमान के लिए कोल्ड ड्रिंक बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मजलिस में आते हैं तो आप कहते हैं अरे आइए बैठिए ना, उसके लिए खड़ा हो जाता है ताकि उसको टेक निकाल कर उधर थोड़ा सा उधर बैग बोल नहीं करो, उनको जगह दो। हम सामने वाले को उसके इल्म से नापते हैं नहीं, उसके तकवा से नापते हैं। हम तो कहते हैं अल्लाह का उसका मामला है, नमाजें लंबी लंबी पड़ती है, हमारे लिए थोड़ी पड़ती है, खुद ही जन्नत में जाएगी। तकवे से नापते हैं नहीं, हम उसे पैसे से नापते हैं। रिश्तेदारों में पैसे से नापे जाते हैं, सर्कल में पैसे से नापे जाते हैं, मुआशरे में पैसे से नापे जाते हैं। आठवें इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा अलैहिस्सलाम आठवें इमाम पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया, इतराज किया कि अपना सुरेदा बहुत ज्यादा फकीरों के साथ मुशफ शर मुकदस में बैठे। तो इमाम ने कहा इनके साथ बैठने से मेरा दीन महफूज हो जाता है। आपको सोचना कभी कभी घर में बच्चों के सामने आपने ऑमलेट भी रख दिया, फ्राई भी रख दिया, तो वो तीसरी की बात करने लग जाते, उबला हुआ खाना तो मैंने तो नहीं खाना ही वाला। आप बच्चे के सामने झंडा उठा लो, रोएगा जिद करेगा, अंडा 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 अंडे के बगैर है। हमारी एक दोस्त आ रही थी, मुझे इतना बड़ा आलिमा बनाने में बहुत बड़ा किरदार है मुर्गी का, अगर मुँह ना होती और अंडे ना देती तो मैं किस तरह जमाना को अंडे की ना कितनी बड़ी आलिमा को आदि करती। तो अंडे का भी बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंसान सोचे, जब आप मुकर्रम के साथ बैठे थे और एहसास होता है परवर दिगार तूने इन सारी नियमतों से हमें नवाजा जिससे ये महरूम है, और स्पेशली इस वक्त जबकि मुसीबतों की बहुत बड़ी वजह फाइनेंशियल क्राइसिस है, बहुत बड़ी वजह यही शायद जो झगड़े निजाम घर में उठते बैठते ना मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के, लेन देन के। मैंने शायद पिछले संडे को आपके संबंध में एक जुमला किया था, घर भी तंग हो गए दिल भी तंग हो गए, मेहमान आते तो हम सोचे कितने का नोट निकलेगा, हजार अगर पट से फुट फुट करके आए मुर्गी टाइप की तो खातून आठ बच्चों के साथ आ जाए। मेहमान पहला दिन से चाहते अगर दाल चावल को कहा तो सवा सौ रुपए की किलो चावल और इतने की दाल ओ खुदाया कहाँ जाएगी, पांच सौ तमाम निकालने हजार का निकालना मुसलमानों में से है। हमने कत्ल को बुराई बना दिया जबकि पैगंबर ने सलमान फारसी ने कहा ना मुझे ताकीद की गई है कि फुकरा से मोहब्बत करूं और उनसे नजदीक रहूं। जब हम ऐसे लोगों के साथ उठते बैठे ना जब वो कहते हाय बाजी आपके पास तो ये भी है मेरे पास तो ये भी है, तो दिन में एहसास होता है अल्लाह का शुक्र ये तो है, वरना उससे पहले घर वालों से लड़ रहे होते कि पुलाव आएगा कैसी चीज छूरे। ये छोटी छोटी सी चीजें जिनको औरतें जान देती, मेरा ख्याल औरतों का चार पांच चीजों के अंदर होता है, जूते बैग कपड़े किचन वेयर हाउस होल्ड जिन्हें कहते हैं, ऐसी किसी दुकान में घुसा दो 70% ऑफ घुस जाएंगे निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, हम इनको भी निकाल कर लाएगा जब दुकान बंद होगी। कॉस्मेटिक्स की चीजें परफ्यूम बाद औरतों का आप देखें, पिछले दिनों मैंने एयरपोर्ट पे खातून को देखा सूख के सिर्फ परफ्यूम से भरा हुआ, मैं कहा भाई मर गई एक चीज है तो जान तो उसको कहता ऊपर ही लेके जाने दूंगा इसको नीचे डाल के मेरे परफ्यूम टूट जाएंगे। मैंने कहा बेटा ये तो टूटेंगे जब कवर में भी जाऊंगी तो भी तुम्हारे 14 पर्चर हो जाएंगे, लेकिन हमारा इस क्या है जिंदगी ये चीजें बढ़ती हमारा दिल बढ़ता रहता है। तुम्हारे कपड़े किसी की शादी होती है तो मुझे खुश होते नए कपड़े बनवाए, बहन क्या शादी है, भाई क्या शादी है, पुप्पी क्या शादी है, खाला क्या शादी है, हम बेगा भी शादी में अब्दुल्ला की बाढ़ी है बहुत सारे हमारे पास कोई कपड़े बनवाने जूते पहनने लेके जाना मरी थे आपको पता क्या सकते हैं आप गूगल पे जाके ब्याना को सर्च करेगा यानी मेरे 11 में क्या पड़ जाएगा, उसका भी इस कपड़े था मेरा भी इस कपड़े। एक जमाने में जब इमाम खुमैनी ले रहे रहमतुल्लाह थे ईरान की एक पार्लियामेंट की पहली खातून से इंटरव्यू लिया केहान गालू, केहान एक न्यूज पेपर है तेहरान से निकलता, उनसे पूछा हमने इतनी स्ट्रगल की हो यहाँ तक पहुंची ये किया वो क्या फलाना ढूंढाना आपकी जिंदगी का आइडिया है जिसे देख कर आप यहाँ तक पहुंच रहे शादी का हम है। उस जमाने में ईरानी चैनल वाले एक जापानी सीरियल दिखाते थे ओशीन के नाम से, और मैंने सुना है पाकिस्तानी चैनल से दिखाई है, उसमें एक 7 की बच्ची की कहानी होती है जिसे उसका बाप 2 बोरी चावलों के बदले बेच देता है, फिर दिखाते वो लड़की बड़ी स्ट्रगल करके मैंने वो सीरियल 2-3 दफा देखी है, बड़ा वाले पानी से डायपर धोती है और ब्यूटी पार्लर खोलती है, आखिर में उसने बड़ा मकान पा लिया जा पाता। इस खातून ने कहा कि मेरे नजदीक आइडियलाइज करने के काबिल ओशीन थी, मैंने ओशीन को आइडियलाइज किया और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुंच गई। अगले दिन जब ये कहान इमाम खुमैनी लेकर रहा की सदन में पहुंचा, इमाम खुमैनी ने कहा अगर वजूद नाज़नी ने सिद्दीक़ कुबरा को जहन में रखने के बाद से जो जुमला कह रहे इस्लाम के दायरे से निकल गई, हमारे पास आइडियलाइज जब सूरज जल रहा है सूरज चमक रहा है तो मैं और आप चराग थोड़ी जलाएंगे, सूरज के जलने पर सूरज की रोशनी में चराग जलाने वाला क्या कहलाता है बोले बेवकूफ अहमद, अरे ये जो नहीं बोल रहे इसका उन्हें सो रही, ठीक है अहमद बेवकूफ अकल चलता। अच्छा मेरे सामने मकाम इस सामक है सिद्दीका कुबरा है उसके बाद मुझे जरूरत है मैं किसी और को आइडियलाइज करूं, और विज्ञान मकान का तो बहुत ही प्यारा जुमला है, असल आपकी जमातों को एक मानवी हदिया दूं लगत कान अली पीविन का रसूल हसना, इमाम जमाना कहते हैं कि मेरे लिए मेरे रसूल की बेटी उसवा हसन जो मेहमान कायनात है। हमारे पास सिद्दीक़ कुबरा की मिसाल है, हमें किसी और की मिसाल की जरूरत नहीं है, और 12 शहजादी का मकाम और शहजादी का इशार इन शहजादी ने हमारी तरह पैसों की कैटेगरी नहीं बनाई है, हम भी शादी का लिबास अल्लाह के नाम पर दे देते हैं जब आउट ऑफ फैशन हो जाता है, वो पहनने के बाद से पहनने कहाँ जाएंगे मेरे घर तक ये गुलाब चढ़ाया है और हो जाती है, आप तो देखिए कितनी तेजी से डिजाइन बदलते हैं, शादी के वेरी नेक्स्ट डे देने का हौसला किसी में होगा, बहुत लिमिटेड लोग ऐसे होंगे जो शादी के अगले दिन पहनिए, हम तो शादी को ही सोच रहे थे इसके बाद देवर की शादी होने वाली उस वक्त पहनेंगे, इसके बाद भाई की शादी होने वाली, आपने देखो बाद हॉल में दाखिल हो तो 2-3 खवातीन तो दुल्हन बनी हुई पूरी किसी में फेवर होती है, ये कौन है ये हमारी 9 ब्याह तक बहू है, भाई की शादी थी उन्हें शादी का लहंगा दोबारा और कुछ तो इतनी ओवर लगती है टीका झोंका नथनी सब पहन के फिर रही होती है, ऐसे लगता है जहाँ से करीब से मुझे लगा लो उनकी यहाँ से गुजर रही है। लेकिन खुद आप इंसान सोचे, पैसे से मोहब्बत है, पैसे वालों से भी मोहब्बत है। हालांकि पैगंबर ने कहा फुकरा से मोहब्बत करो, उनके नजदीक रहो। चौथी चीज कहूँ का हक बात कहूँ अगर से तरफ को अल हक को मुर्दुन सकी यह जो बराबर में जाहिर हूँ मैं हूँ हक तरफ होता है भारी होता है। तो बताइए यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है हर सच को बयान करना भी रिवायतों में नहीं मिलता। कुछ लोगों को आपने देखा होगा भाई हम तो साफ हो है ये क्या हम लोगों का बनाए हारी के नाम पर हम दिल में नहीं रखते मुंह पर कह देते। अच्छा ऐसे सच को बोलने की भी रिवायतों में नहीं जाती है आप चुप रहे करके जुबान बंद रखे नहीं चाहिए आपसे मजा बहुत अजीब सी लग रही है। ये क्या बालों का हसर करवा दिया स्ट्रिकिंग करवा कर तो तुम्हारे बाल घुड़ेगी तुम लग रहे आपने इनसे राय मांगी। कुछ लोग बहुत साफ को बनते हैं मुआशरे में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जरूर कमेंट्स करेंगे। अच्छा इतना घटिया कमेंट बनी होता है बगैर मांगे किया गया। दो चीजें बहुत हल्की होती है एक बिन मांगा मशवरा और एक बगैर। मैंने आपसे पूछा मैं कैसी लग रही हूँ नहीं पूछा तो चुप रहे। हम तो साफ बात करते भैया लगी लिपटी में रखते मुनाफिक नहीं है आप बहुत अच्छा होता मुनाफिक होती मुंह बंद रखते अपना और अपने इसको अपने तक रखते हर बात तो अगर से तक हो लेकिन हर सच को मजे की बात यह है कि कुछ रिवायतें हैं हर सच की बोलने की मुमानियत में। मेरे पास एक किताब है लुकमान हकीम नसाई है लुकमान हकीम उसमें हजरत लुकमान के वो नसीहतें जो अपने फर्जंद को की उसमें हजरत लुकमान अच्छा मजे की बात है आइंदा ने दोनों को दोहराए अपने फर्जंदों के। जनाब लुकमान का मकान इतना था इतनी खुदा ने हिकमत दी थी एक जगह पर आ गए मेहदी ताजुद्दीन ने नकल किया है कहा कि खुदा ने हिकमत सिर्फ इसलिए दी थी कि कहीं से गुजर रहे थे एक कागज पर नजर अल्लाहुम्मा देखा और उसे धो लिया। धोने के बाद मुझे धोकर को कहाँ फेंक पहले सोचा यहाँ फेंकू वहाँ फेंकू जहाँ पर फेंकने का ख्याल करते तो सोचे मेरे अल्लाह का नाम इस पानी से मिला उसे पी लिया। जैसे ही पिया ना खुदा को ये इतना प्यारा लगा कि खुदा ने दिल के अंदर हिकमत के चश्मों को जारी कर दिया और ऐसी ऐसी यानी उनकी लाइफ हिस्ट्री थी कमाल की चीजें कि इंसान पढ़ता है और इबरत। आप देखिए कुरान में पूरा एक सूरा है उनके नाम से कुरान में उनके जुमलों को कोट किया है रिवायतें कहती हैं बहु मजलिसी रिवायतों को नकल किया है कि लुकमान के पास दो फरिश्ते आए और कहा हम तुम्हारे लिए नबूवत लेकर आए। जनाब लुकमान ने पूछा हुक्म हुक्म में मौलवी है या इरशादी। अब मदरसा तो कायम की सीक्रेट रूप से तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हुक्म मौलवी क्या होता है या इरशादी क्या होता है यानी नेसेसरी है या अननेसेसरी है। तो खुदा से कहो मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल नहीं और हिकमत के 10 दरवाजे थे नौ खामोशी में नौ खामोशी में जैसे दाऊद के पास बैठे रहे थे तालीम कहते ना कुरान कहते हमने दाऊद के लिए हदीस को नाजिल किया और लयीन कर दिया नरम कर दिया हजरत दाऊद के हाथ में लोहे को हजरत दाऊद ने जिरा बनाया इससे पहले तो रुकमान ने कभी जिरा नहीं देखी। सोचना चाह सवाल करना चाह कि ये क्या है ये क्या करोगे हिकमत आड़े आई नहीं पूछा यानी हमारी तरह नहीं थे ना अपना कहाँ से लिया है चूची कहाँ से लिया है ये कहाँ से लिया है वो कहाँ से लिया है दर्जी कौन सा अच्छा है जो तुम्हारे कपड़े फटाफट सी देता है खामोश रहे नहीं सवाल किया। हजरत लुकमान ने जिरा को हजरत दाऊद ने जिरा बनाने के बाद किसी को सजा लिया कहा कितनी बेहतरीन जिरा है जंग में आवाज हर्ब से बचने के लिए एक जुबानी सजा शुक्र किया। जब सजा शुक्र खत्म हुआ तो हजरत दाऊद ने सवाल किया लुकमान सजा शुक्र क्यों किया क्या खुदा ने मेरी आबरू की हिफाजत कर मैं सवाल करना चाहता था नहीं अल्लाह ने सवाल करने से बचा लिया और हमारी जिंदगी गोल गोल घूमती है सवालों के बीच कौन कहाँ जा रहे कब तक आएगा हैं अकेले जा रहे हैं बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं कैसी नियम दी है अकेले बच्चों को छोड़ के चले गए इतनी पंजाब और हमारी जिंदगी में इतनी इंटरफेयरेंस है बहुत आ गए मजारी के प्यारा घर के आखिर में कहते हैं कुछ चीजें जानवर इंसान से इंसान जानवरों से सीखे दूसरों की जिंदगी मुदाखलत कितनी कर दिया बहुत हम रह नहीं सकते हमारी तो रोटी हजम नहीं होती जब हम अच्छा फर्ज करें मेरे बराबर में मेरी बेचारी मजलूम भाभी रहती है और भाई रहता और मैं देखो रात के 1:30 बजे तक गाड़ी पार्किंग में नहीं है कहाँ गई मुझे नहीं बता कर गई और नहीं तरह कर इसके तो मैं कान खेचूंगी अकेला अकेला बीवी बच्चों को ले गया बहन को पूछे मुझे सूखता था तुम्हारा वो बहन अपने मियाँ के साथ जाए जरूरी भाई के गले में लटक के जाना लेकिन रह नहीं सकते ना। आखिरी महीने की तारीख को मैं किया याचिया ध्यान होता है कचरा दे रही थी उसके अंदर मैं ढोलक के डब्बे थे ये कर सकते भैया भाभी के बेटे वाले बड़ा भरते हैं इनको वरना तो तनख्वाह दार आदमी तो मेरी आखिरी तारीख को मैं ऐसी रियाजी सोच भी नहीं सकता इतने इशू से दिमाग के अंदर गुजरे जिस दिल के अंदर इतना कचरा हो वहाँ याद है बख्ती अब्दुल्लाह इला आजम कैसे आएगा वहाँ जिक्र अहले बैत की जिक्र परवरदिगार का हुलूक कैसे आएगा ये चीजें। लेकिन लुकमान हकीम वो हिकमत के मालिक नौ हिस्से खामोशी के अंदर नौ हिस्से चुप रहने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए स्पेशली औरतों को, आपको पता है मुझे एक बात और तुम क्या जाए तो ज्यादा तादाद में झंडू में जाएंगे, मुझे बड़ा इस चीज पर दुख होता है कभी कभी, इसलिए अच्छा ज्यादा ही बात गुजार भी होते, ज्यादा इबादत गुजार भी होते हैं। आप देखिए वहां पर सफा मरवा बैठ के सूरह बकरा पड़े और हाय बाजी उठे चले तो कहे कि नहीं नहीं यहाँ पर हाजिर पूरी होती है, पैगंबर के सहाबा पड़ा करते थे, लंबी लंबी इबादतें करेंगे, जैसे होटल में होते हैं किसी की तबीयत साफ करके सारी इबादत उसके हवाले कर देंगे। देखा हमारे हिस्से में तो मुझे लगता है बोलियां निकालनी हमारी बिरयानी में से गुमदान तोहमत बदगुमानी हर चीज को, अब हज के आई नहीं खाओगी बोली बन जाओगी चार बोलियां कम हो जाएगी, नहीं सारी टेंशन इन्हीं चीजों में अंदर लगी रहती है। लेकिन हकीकत है हर सच हजरत लुकमान अपने परजन से कहते हैं हर सच मत बोलो, बेटे को बहुत अचंभा हुआ बहुत ताज्जुब हुआ, कहा कि बाबा सच है तो बोलो क्यों, उन्होंने एक मिसाल दी हजरत लुकमान के रेफरेंस से उस मिसाल को बयान करूं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, क्या मसलन तुम्हारी वो अच्छाइयां जो तुम्हारे अंदर मौजूद है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनकी कैसे हमेशा मैं बैठती रहती हूँ, मैं ये मैं वो मैंने पहना मैंने दिया मैंने, अच्छा ऐसी केसेस आप कब तक सुन सकते हैं, थोड़ी देर में बेजार हो जाते हैं, पता समझदार लोग क्या मकना पहना अंदर हेल्थी डाले और कुछ ना कुछ सुंदर शुक्र नदी तरह के हमें सुंदर शुक्र नहीं लगी नहीं, इनको कोई परवाह नहीं है, हमारी शादी तो भैया हमारी मैया ने ऐसे की थी कि वो खुदाया अभी तक चलते हैं, ये करवाया झेल दिया सुई से सुराख तक दी खुदाया, कितनी देर आप शादी में बैठ सकते, मेरा मियाँ मेरा दम मरता है, मेरे बच्चे मेरे भी मरते हैं, मेरे बहन भाई ये मैं कोई भी नहीं सुनना चाहता, जिंदगी के अंदर समाज के एतबार से बदतरीन लफ्ज है मैं और खुशगवार तरीन लफ्ज है आप, क्या आप कुछ बोली डील ने उसके अंदर बताया है कहा कि बहुत सारे लोगों को आप अपनी खुश अखलाकी का चर्चा इसलिए करवा लेते हैं कि आप वहां से चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी शख्स का मतलब भी किया कि उसकी डांट में बहुत शदीद दर्द और गले में सूजन थी, वो जहाँ चला गया किसी डील में वहां जाकर सिर्फ मुंडी हिलाता रहा सर हिलाता रहा, बाद में सबने कहा बड़े खुश अखलाक साहब थे, कहा मुझे होने का मौका ही नहीं था मैं बोल ही नहीं सकता था, बाद बच्चों के रिश्ते ऐसे भी हो जाते हैं कि जब वो होने वाले ससुराल से टाकर होते ना तो उनकी दाढ़ में दर्द होते, सास समझते बड़ी भले मानस चुपचाप ऐसी गुमसुम टाइप की बच्ची हमें चाहिए कब वो अपने आप में रहने वाली, वो तो जब घर में आती है गौर घूमते गौर चलता है पड़ोसी कामों में रुई लगा कर बैठे रहते हैं, लेकिन बहुत सारी सच्चाइयां ऐसी हैं जिन्हें बयान करने की रिवायतों में मुआनत है, बस हम कंट्रोल करें हर बात को, अगर ना करें तो प्रेम मिरातुल रिशाद जिनकी उर्दू ट्रांसलेशन अकवाल इस्लाम के नाम से महूम निशान है जवादी आल अल्लाह मकामा उन्हें की, उसके अंदर उन्होंने आला अब्दुल्लाह इमाम खानी का जुमला नकल किया है कि इंसान उस जुमले का मफूम यूं है कि इंसान खामोशी में ज्यान नहीं देखता बात करने पर जरूर देखता है, काश मैं सब चुप रहता, बहुत दफा जिंदगी हम भी पछताते हैं बीच में खूब जाते हैं फिर बाद में सोच रहा है अब ये बात, अच्छा औरतों को दूसरा जो डर होता है वो ये बात आगे चली गई तो क्या होगा, तो बीच में उस वक्त संभालने में भी अब तो निकल गई मुझसे, इसके बाद कहा कि पांचवा ऑप्शन पांचवा जुमला सिला रहमी करो अगर से वो पीठ दिखाए और पते रहम करे, सिला रहमी करो अलबत्त सिला रहमी भी हमारा एक बड़ा इशू है, हम सिला रहमी को सही समझ नहीं पाए, सिला रहमी सिर्फ उन लोगों से होती है जो आपसे मीरास पाते या जिनकी मीरास हमें मिलती है, फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स माँ बाप औलाद बहन भाई उनके बच्चे चचा मामू खाला खुप्पी और उनके बच्चे, अच्छा उनके ग्रेड के साथ जैसे तक उनको मीरास मिलती है ना इतनी 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 उसी तरह से उनके साथ सिला रहे, चाची के साथ सिला रहे नहीं, मामी के साथ सिला रहे नहीं, भाभी के साथ सिला रहे नहीं, अब जो धुंधा बोलने लगी हो सकता है आप मेरे बाप के शौर के अगली दफा लहरा या तुम ये दर से भी नहीं जाना, इन लॉस के साथ सिला रहे वाजिब नहीं, कोई वाजिब जिम्मेदारी नहीं कि हम उसे चले जाए उनके उसके अंदर, अब कई सब मुस्ता सिला रहे के अंदर आ जाते हैं, वाजिब सिला रहे सिर्फ अरहान के साथ जो फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है सिला रहे नहीं करो अगर वो पीठ दिखाएं और कतें रहम करें, और रिवायत में आकर उनके महलाती ने इमाम मूसा काजी अलैहि सलातो व सलाम इमाम अली मकाम ने अली ने इस्माइल की तरफ इशारा किया, एक जगह मैंने मोहम्मद इब्ने इस्माइल पढ़ा खुलासा उनके कोई सौतेले भाई थे बंगाल जा रहे थे, इमाम ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि तुम्हारी कोई हाजत है, कहा मेरा पढ़ कहा मैंने सुना तुम बंगाल जा रहे हो, कहा जी कहा तुम अपनी हाजत हमसे बयान करो हम तुम्हारी हाजत को पूरा करो, इमाम ने उसे हैंडसम अमाउंट दी, उसके बाद इमाम से जब भी आप जा रहे थे साथ में इमाम ने बुलाया, बुलाने के बाद कहा देखो मेरे बच्चों को यतीम करने में शरीक ना बना, इसे अपने सर को झुका लिया, उसके बाद इशास चला गया। इमाम ने अपने सहाबा से कहा कि इशास मेरे बच्चों को यकीन करने के लिए हारून के पास आ। और इशास हारून के पास पहुंचा, उसने हारून के पास पहुंचने के बाद सलाम दुआ अहवाल पूछी। का पहला जुमला था कि मैं क्या देख रहा हूँ खलीफातुल्लाह, खलीफातुल रसूल, सॉरी, एक मम्लिकत इस्लामी में दो खलीफा, एक यहाँ पर आप और एक वहाँ पर दूसरे का है। और यहाँ पे फिर हारून के अंदर वो जो नफरत थी वो उभर कर सामने आ। ऐसे लोग हैं तारीख बशरियत में जो ना सिर्फ ये कतल है करते बल्कि दूसरों के कत्ल का सबब बन जाते, जहां तक हो सके चाहे टेलीफोन कॉल के जरिए, और कोर्ट के अंदर सिला है कि मरदार क्या है। एक तबरुकल में फिर मसला करके अल्लाह का शुक्र है मुझे फिर नहीं दी गई, लेकिन एक तबरुकल में फिर मसला और तू ये कह रहा है कि उनसे कटे हुए नहीं है, हम उनकी खुशी में भी शरीक होते हैं, उनका खुदा का दुख होगा तो भी हम शरीक होंगे। कुछ लोग समझे सिले रहे का मतलब किसी के सर पे सवार हो जाए, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मिसाल के तौर पर अगर मेरा मेरी को खाला मामी पुप्पी चाची चाची और मामी को निकाल दें, खाला और पुप्पी रहती हैं, तो क्या बच्चे की पैदाइश हो, बच्चे की शादी हो, खुशी गमी हो, मैं इंशाल्लाह जाऊँ, और खुदा ना खासा खुदा ना खासा कोई बड़ी बीमारी हो जिसमें दूसरे दूर दराज के लोग भी आदत इधर उधर के लोग भी इस तरह की चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व रहना कि माशरे में हो कि हम उनके साथ ताल्लुक में हैं। ऐसा ना हो कि हम ना उनकी खुशी में जा रहे हैं ना उनकी गमी में जा रहे हैं, और हमें पते रहन से यानी काते रहन समझा जाए। खुलासा सिले रहनी करो अगर से वो कोई दिखाए, और ऐसी रिवायतों का घेर है कि सिले रहनी करने से माल और रिश्त दोनों में इजाफा हो। आप देखिए एक सोच हमारे यहाँ है अब जो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है कि हम अपने नादिदा दुश्मनों को ढूंढते रहे। कुछ लोगों का आपने देखा होगा पैसे की देर पर इसकी पता नहीं किस मनमोहन सी नजर लग गई, पैसा पैसे बरकत नहीं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा वो इस तरह की चीजों का इशारा जादू की तरफ करते, किसी ने कुछ करवा दिया। मतलब तीन चार चीजें बड़ी मशहूर है हमारे माशरे में, मैं पिछले 6 साल से तकरीबन कराची में देखती हूँ। पहला इशू यही कि खुदा ना खास्ता रिस्क में बरकत खत्म हो जाए तो लोग कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया। हमारा हमारे पाकिस्तानी पुलिस जैसा है, ना मालूम डाकू ना मालूम मकाम की तरफ फरार कर गए, किसने कुछ करवाया। नहीं भैया इतने बहुत सारे दुश्मन है हमारे, बस मुझे पता है इनसे देखा नहीं गया, हम नए घर में गए, नए घर में जाने की देर थी, हाथ इतना तंग हो गया क्योंकि तो इतने लद्दे तल्लों में पैसे उड़ाए थे तो हाथ तो तंग होना था ना, बैठकर आप खाएं तो कानून का खुदा ना खत्म। पहला इशू ये, दूसरा इशू ये कि बच्चियों की रिश्ता की बंदिश है, बस बंदिश है, किसने करवाई, किसी ने करवा दिया मुझे पता चल गया, मैंने अपनी सोच से पता नहीं करवा दिया कि मेरे बच्चों के रिश्तों की बंदिश है। तीसरी चीज ये कि खुदा ना खास्ता पे दर पे एक या दो या अल्लाह ना करे तीन नाकहानियां बात हो जाए, तब भी लोग कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया। और फिर नंबर वन की तरफ वापस आए, हम कते रहम करते हैं, हम कते रहम करते हैं। इसी तेहर हदीस में 5-14 की रिवायत है, वजह तू अला सलाम का मवाकी बरकूना, मैंने कते रहम को किताब खुदा में तीन मकामात पर लानत का मुस्तहिक पाया। हम कते रहम करेंगे रोजी की बरकत चली गई, वो पार्टी के मैंने में सुराख हो गया। अच्छा जब बरकत नहीं रहती ना तो फिर कसरत कोई काम नहीं आती। कुछ लोग आप देखें इसी माशरे में जी रहे हैं 12-15-13 हज़ार रुपए की तनख्वाह पर और मुतमिन जी रहे हैं, महंगाई उनके लिए भी है, क्राइसिस उनके लिए भी है, लेकिन ऐसे नहीं है जैसे बाद लोगों की तरफ 50,000 रुपए और वावेला उनका इतना ज्यादा है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक चीज होती है कसरत, एक चीज होती है बरकत। अब मेरा मौजूद नहीं है, मैं इसे बयान भी नहीं करना चाहते, किसी और उस्ताद से पूछिएगा कसरत और बरकत में फर्क क्या है। दुआए बकारी के अखलाक का जुमला है, अल्लाहुम्मा वफ़िर बरकती बिल बरका, तो जो कुछ मेरे मिल गया मुझे बरकत दे दे। कसरत कहीं ना कहीं से निकल सकती है, बरकत जो परवरदिगार दे दे वो आखिर तक बाकी रहती है। आपको सोचे कुछ लोगों के पास इसी माशरे में पैसों की कमी है लेकिन माशाल्लाह हर साल जातों में चले जाते, कैसे जाते, खुदा ना खास्ता चोरी करके जाते, खुदा ना किसी जेब काट के जाते, नहीं उस कमी के अंदर भी खुदा ने बरकत दे दी। जब हमने कते रहम किया हमारी बरकत बाय बाय चली गई। दूसरे ऑप्शन की तरफ आते हैं रिश्तों की बंदिश, ये बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा बुरे इशू अपने पाकिस्तानी माशरे के अंदर। रिवायत है कि जब तुम्हारी बेटी के लिए पहला मुनासिब रिश्ता आ गया जिसके अखलाक और दीन से अपने बाद में रिवायत बयान करी, तुम मुतमईन थे और तुमने उस रिश्ते को रद्द कर दिया, जमीन पर ऐसा फसाद पैदा होगा जिसे तुम कंपनसेट नहीं कर पाओगे। मेरी बच्ची के लिए रिश्ता आया, मैं खूब से खूब कर की तलाश करूँ, लड़का क्या करता है 15,000 रुपये तक आए हाय, इसमें से मेरी बच्ची को क्या देगा, यूटिलिटी बिल्स क्या निकालेगा, खाने पीने का कहाँ से होगा, राशन पानी का कहाँ से होगा, घर भी अपना है, अभी तो सब साथ रहे। नहीं भैया सब साथ रहने, वो चिड़िया घर में अपनी बहनी दे दू, यूं कर दू, छोटे छोटे से बुनियादे बनाकर। एक बार याद रखिए जुमला किसी रिवायत का नहीं है, ये मुझे नहीं पता किसी आलिम का कॉल है, मैंने ऐसी किसी किताब में पढ़ा था ये खाली है, अल्लाह के सामने भरी भी करता है। आपने एक दफा, दो दफा, तीन दफा नाम किया, अभी थाली यही रहेगी, खुदा इसकी लज्जत को ले लेगा। कभी कभी खुदा उसकी बरकत को ले लेगा। पहला रिश्ता हमने ऐसे ही टुकड़ा दिया, बहुत रिश्ते आ गए। दूसरा, तीसरा, अब बैठिए पीर बाबाओं के पास जाओ, मैरिज ब्यूरो, इंटरनेट पर कितने मैरिजेस के वेबसाइट है, वो खुदा है कैसे कैसे धोखे देते हैं। मुझे लगता है पुरानी मॉडल को उसकी तस्वीरें काट कर दे देते हैं, अंदर से निकलती है 35 साल की, डेढ़ उम्र का तस्वीर दी, 18 साल की दोषी दाई। बंदिश नहीं है ये, बंदिश जहां रंग बता दो फिर बंद नगर का हमें वापस कर देती हूँ। ये जुमला जो मैं और आप लोग दुआएं हमें पढ़ने को आ गया है, जितना कुछ तो तरीके साथ है हमारे हाथों का हुआ। जब एक मुनासिब रिश्ता आ रहा था, अच्छा हमने अपनी बेटी के नसीब में भरोसा ही नहीं, इसके नसीब में होगा ना महल में रहना तो अल्लाह उसको महल में रखेगा, चाहे वो महल कहीं से भी अरेंज कर दे, और इसके नसीब में खुदा ना था झोपड़ी में रहना होगा उसका महल डिमोलिश हो जाएगा, चलो छुट्टी जाओ अब जाकर किसी खुदड़े में रहो, किसी कोने खड्डे में रहो। अल्लाह के उन पे वादों में भरोसा नहीं है, ठीक है बंदिश करवा दी, हमारे पास अब कोई यकन, हमने हमेशा एक नाजीदा कमरा घूमते हैं जिस पर अपना सारे मुद्दे डाले, बच्चे बिगड़े हुए, माहौल खराब है, पुराना बिगड़ा हुआ है, ये खराब है, कभी होते हैं हमको दिल खराब। अभी मैं आगे बयान करूंगी कि हम खुद कितने पालेंगे। और तीसरी चीज, नागहानी हम बात, कुछ गुना ऐसे हैं जब माशरे में राइज हो जाए नागहानी हम बात होने लगते हैं, कुछ गुनाह ऐसे हैं जब वो माशरे में राइज हो जाए, मुझे ना वो गुनाहों की तरफ बोलने की जरूरत है, आप माशाल्लाह माशाल्लाह समझदार लोगों को के साथ बात करने का यही फायदा होगा, आप आधी बात भी करें तो सामने वाला समझदार। और इस वक्त जिस तरह से माशरे में पानी की तरह फैले हुए, लोग उस गुनाह को गुनाह कहाँ समझते, और सबसे ज्यादा बड़ा गुनाह वही होगा जिसे करने वाला उसे हकीर समझे, कोई बात नहीं माफ कर देगा। अंतिम ऐसा तो अल्लाह का अशद मुआखिरी फी मौदे निगाले वन्ने कमा दुआए इत्तेदा के इत्तेदाई जो खुदाए मुझे यकीन है तो अल्लाह और रामीन है जहाँ बख्शिश की बात आती है, और अशद मुआखिरी है उसे सद्दाम को कैसे पकड़ा, मोहम्मद कदाफी को कैसे पकड़ा, वो पकड़ने पर आए बकौल आयतुल्लाह इब्न्ना सैयद आगे शेख मोहम्मद अली अराकी के फैसले में नमाज जमात पढ़ाते हुए अक्सर एक जुमला कहते थे, खुदा दीन दीन सब कीरत, ये ऐसे पकड़ते हैं बहुत बुरी तरह पकड़ते, बस ऐसे गुना छोड़ दे खुद ब खुद हम अगर अहले कलिया मुत्तकी हो जाते, जमीन और आसमान से बरकतों को नाजिल करते, उन बरकतों में से एक बरकत नजर अगर मेरे घर में शादी के काबिल बच्ची है तो उसके लिए रिश्ता भी तो एक बरकत है ना, खुदा की एक नेमत है, एक इनायत है बरकत वाले हमें। हाँ ऐसे गुनाहों को कंट्रोल करें, हमारे बहुत सारे मसाइल खुद बखुद हल हो जाएंगे। सेकंड लास्ट ऑप्शन, छठा जुमला पैगंबर की वसीयतों का, लोगों से किसी चीज का सवाल ना करो। इसी दिन ने आगे हाशिम रसूलिया महलात में एक रिवायत को बयान किया है शरह चहल हदीस में, कहते हैं अंसार का गिरोह पैगंबर की खिदमत में आया और आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह हमारे लिए अपने रब की जन्नत की जमानत दे। पैगंबर ने जुमला सुना, सर पैगंबर के लिए जन्नत की जमानत देना को बड़ा इशू नहीं है, पैगंबर के लिए अभी पैगंबर की कंपेनियंस के लिए मैंने रिवायतें पढ़ी हैं, अब आप बशीर ने किसी को जन्नत की जमानत दे दी, फलाने ने किसी को जन्नत की जमानत दे दी, इंसान मोमिन हो जाए। हाँ जी सर, उससे अफर्जा जाता हूँ तो मेरी दावत है, तुझे अपने जैसा होना था, और उसकी एक क्वालिटी का इरादा चाहिए जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है कहता हो जा बस वो हो जाते। आगे भावदीनी के हवाले से एक मिसाल दी है, अब मुझे नहीं याद मैंने किस किताब में पढ़ी है, शायद आ गए हुसैन के तेहरान की किसी किताब में पढ़ी है, या आ गए फातिमिया की किसी किताब में पढ़ी है। कहते हैं ये जो आगे भावदीन कराची में देख आया आयतुल्लाह साहिब एक बसीरत थी उनके लिए, जो दीदार बाबरा का सिलसिला उनका टाइटल ये है कि आयत बसीरत, बहुत ही मानवीय शख्सियत है आगे वैसे जैसे उनके बच्चे के साथ ऐसा मरहला हुआ कि बस बीमार है मरने वाली है बस गई के लिए। कहते हैं इनका वजूद सराबा जिक्र था, चलते फिरते उठते बैठते हमेशा जिक्र खुदा में मशगूल रहते थे। घर वालों ने कहा कि बच्ची साहबा का वक्त समझे मिजा आ गया मेरे पास में मरने वाली, आप आए और आकर कुछ पढ़े ताकि खुदा इस तरतीज से निजात दे दे। कहा जैसे ही आए उस बेटी के करीब उसके बानी पर उसकी वो पानी की बढ़िया सराहने जहाँ पर बैठे, कहा जितने फैमिली के या जितने इधर उधर के लोग थे वो सब डिवोटेड थे कि भी आ आएंगे खुदा खुदा मशगूल पढ़ेंगे जिसे हिस्सा पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अच्छा हल्के फुल्के वजीफों से तुम्हारी जान भी नहीं। हम कहने ना इस चीज के लिए तीन मतलब आसमानी था कि हम तो भी बस ये तो आके चाहती है समुद्र में गर्म मशहूर पड़े वो भी नहीं पड़ेगी ये भी नहीं पड़ेंगे। आकर बैठ के अपनी बच्ची की पानी देखा बहुत ही जल्द से गिरा रही, बहुत ही अजीब शदीद जज्र की कैफियत थी, तकलीफ बस से सेवा हुई आसमान की तरफ मुंह करके कहा पर दिखा रहा हमारे कद आज हम कितने आज हैं। बच्ची उठकर बैठ गई, बच्ची उठकर बैठ गई। इंसान जरूरी नहीं है कि जुबान से हमेशा पेटेंट जिक्रों को दोहराए, ऐसे इख्तियारात खुदा ने मोमिन को दिए हैं, ऐसे इख्तियारात खुदा ने अपने औलिया खास को अगर अब्दुल्लाह फातिमी ने नुक्या गुर्जा में लिखते हैं कि इशराक खास आपके अलग से एफर्ट की है, होगा ऐसा दुनिया की जिंदगी में हम ऐसे मिसाल दें। मिसाल के तौर पर मेरी किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छी सलाम है, थोड़ी देर के लिए फर्ज करेंगे मदरसा तो खाइम के साथ, ठीक है, जैसे मेरी किसी हिसाब से भी अच्छी सलाम वाली है, मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, लेकिन मैं मिड ऑफ द एजुकेशनल एयर पे हम कभी नहीं कहते मेरे बैंड आए थे स्कूलों में कहेंगे तुम फिक्र नहीं करो समझो तुम्हारी बच्ची का एडमिशन होगा, तुम फिक्र नहीं करो समझो यूँ हो गया, तुम फिक्र नहीं करो हमें अपने दर्जियों में भरोसा होता है। मैं कहूँगी तो रातों रात सूट सी देगा, मैं माची को अलग से बुलाऊंगी तो रात में भी आ देगा, बहन भाइयों का भरोसा होता है। मिसाल के तौर पर मेरे बेचारे शोहर नामदार एक मदरसा चलाते हैं, लोगों को होता है कि मैं कहूँ तो एडमिशन हो जा रहा है कि मुझे कहने की कोई मेरा वो काम ही नहीं है, वो उनका काम है वो जाने, लेकिन हकीकत है दुनिया में हर किसी पर भरोसा करते हैं। आ गए अब्दुल्ला फातिमी ने इसमें आ गए अमीनी की मिसाल दी साहिब गरीब, और शायद ये मिसाल में मैं पहले मदरसा तो कायम में दे भी चुकी हूँ लेकिन बहरहाल तकरार करने में कवाहत नहीं है। नकल करते कहा कि इराक के वजीर पदम, वजीर पदम यानी कल्चर का वजीर, हमारे पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है तो वजीर बिठाया जाए, क्या कहते हैं वजीर का इकलौता बेटा ऐसा होता है कि डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया, इसलिए हमने सेक्रेटरी के साथ एक लेटर पैड पर एक पर्चा लिखकर आ गए अमीनी को भेजा नजफ अशरफ बगदाद से भेजा और भेज कर कहा देखो मैं तो बरादरान अहले सुन्नत से ताल्लुक था इराक के वजीर पदम का, कहा कि मेरा तो अमीर मोमिन के साथ अच्छा बयाना नहीं है लेकिन तुम्हारा नजर में चर्चा है कि तुम्हारा अली के साथ बहुत मोहब्बत है। अच्छा इंसान मोहब्बत के बाद होते तो बहुत सारे काम करवा, मोहब्बत ऐसी है जो काम करती भी है करवाती भी है, अंडरस्टूड सी बात है। कहा तुम मुझे मेरे बेटे की शिफा लेकर दो, आगे मिली मैंने आगा फातिमा की तकलीफ सुनी हर नजर मासूमा की, उस पैड को उठाया उसके पीछे लिखा मैंने खुदा से अमीर मोमिन के सत्य में तुम्हारे बेटे को शिफा दे दी, सिग्नेचर किए पेपर हाथ में बजा, कहा हम ऐसे कर सकते हैं। आगे फातिमी लिया के जुमले हम किसी से कहते ना कोई कहते आगे दुआ करेगा पेशेंट कोमा में है वो हो रहा है मगर खुदा से चला जाता है मर जाता है पेशेंट, हमारी दुआ से ठीक नहीं होता, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। कहा ये पेपर लिया है यहाँ से वजीर फरहम के फैक्ट्री ने लेकर घर से निकला, ये कागज नहीं है आगा की आबरू, ये कागज नहीं है ये आगा की आबरू है, कागज लेकर कर क्या सकते हो वहां रखा वाह वाह ऑफिशियल ड्रेसिंग की और घर से बाहर निकले जरी उतार तक पहुंचे ग्रास जरी से लगाकर कहा मौला एक ड्राफ्ट भेजा आप साइन करें तो ऊपर चला जाए लेकिन मुझे पता है ये ऊपर जाएगा। आ गए पाकी मीडिया कहते हैं ये इशराक खास है मुझे पता है मैंने ऐसी मेहनतें मुशक्कतें जहमतें की हैं और आ गए अमीनी की तो सारी जिंदगी भरी हुई थी बगल आ गए अमीनी के फर्जंद थे अर्जुमन के एक मकाम पर नजर करते कहा नजर के सारे ईरान इराक के सारे फुजला मेरे बाप के मरने के बाद मेरे पास आए जो आ सकते थे सिवाय आ गए बहरुल उलूम के खानदान से मशहूर और मारूफ आलिम, कहा जब वो नहीं आए तो मेरे दिल में भी आए कि भाई अब्बा के साथ तो बड़े अच्छे तालुकात थे और कॉन्डोलेंस के लिए तो आए। कहा तीसरा दिन था मैं सुबह घर से निकलने लगा तो बताया मुलाजिम ने आकर क्या आगा बहरुल उलूम आए ये आगे मेरी बहरुल उलूम के खानदान से, कहा फिर मैं गया बिठाया उन्हें वजीर आई के ड्राइंग रूम में बिठाने के बाद सलाम दुआ के बाद मेरे दिल में शिकवा था मैंने कह भी दिया घर से कि आप नहीं आए मुझे तवक्कुल थी कि आप आएंगे तो शीत था, कहा जब तुम्हारा बाप मरा ना जब से मैंने तुम्हारे बाप के रूप से कहर किया था मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे बेटे के पास ताजिए को जब तक मुझे तुम्हारा मकाम ना पता चले, कहा मैं तुम्हारे बाप को देखा 50 साल हमारे साल आ गए नादिर सादत जी ने हमारे बचपन और के दस में कहा था, कहा ये ऐसी आबरू की हिफाजत करने वाले थे जब मस्जिद मुकद्दस में इतराज उठा उलमा अहले तसन्नुम की तरफ से कि शियों के नजदीक ये रिवायत जो है वो बिल्कुल ही नाउज़ुबिल्लाह काबिल यकीन नहीं है कि अमीर मोमिन ने एक रात में हजारों तक नमाज पढ़ा करते थे, तो इन्होंने अनाउंस किया कि मैं इसका जवाब देता हूँ हरम रज़वी के शहर में, और उस वक्त आ गए अमीनी खुद बनवास नफीस गए मीडिया और लोग इधर उधर सब पहुंच गए, जब सब पहुंच गए मगरबैन की नमाज खत्म की पहली तकबीरत इहराम में फजर से पहले हजार रकअत नमाज पढ़ के दिखा, और कहा जब मोमिन पढ़ सकता है तो अमीरुल मोमिनीन किस तरह से नहीं पढ़ सकते। खुलासा कहा कि मैं देखना चाहता था तुम्हारा बाप फना के इश्क में अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के इश्क में फना था, कहां तक का सफर नहीं किया उन्होंने अल-क़दीर को लिखने के लिए, कहां तक का 20 साल लगाए 1 लाख रेफरेंस किताबों से सिखाता है उस अल-क़दीर को लिखने के लिए, और कहा है मैंने तजय्यी को बेरियाज कर दिया इस तक गाली किताब, कहा मेरा दिल चाहता था तुम्हारा बाप अली की सल्तनत में पहुंचे, देखो अली क्या है कहा कि फतह उतर जाएगी जो जिंदा है, कहा मैंने आगे में कहा मिलेगा तुम्हारे बाप की रूह को आवाज दी कहा हो मेरी मुझे आकर बताओ तुम अली की सल्तनत में कहां पर हो, कहा मैं दूसरी साल रात खाब में सोया खाब में देखा मेरे नाने वैसे रहे हौजे कौसर और हौजे कौसर का हर किसी को उसकी हिम्मत के मुताबिक मिलेगा, किसी को शायद वो कहने वाला छोटा सा कप, किसी को शायद चावल भात जितना गिलास। कहा मैंने कहा मिलाने मैचर है, ऑन द बॉक्सर है, मेरे मोहनी बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, सैराब हो रहे हैं, मेरे मोहनी ने अपनी मसला देखते शुरू कर। कहा दूर से उस मैदान मैचर मेरी नजर तुम्हारे बाप के सीने पर थे। मैं देखा हूँ मेरे मोहनी के करीब पहुंचा, मेरे मोहनी ने अपनी जगह को छोड़ दी और आगे बढ़े। दोनों हाथों से कबा के आखिरों को उल्टा, दोनों हाथों को चुल्लू बनाकर पानी भरा, तुम्हारे बाप के होठों से लगा कर कहा अल्लाह उम्मा कोई किस बार जगह कमा वही समझे कैमी, जिस तरह तुमने मेरी आंखों की हिफाजत की, खुदा तुम्हारे चेहरे को सफेद कर दो, खुदा तुम्हारे आंखों की हिफाजत करे। जन्नत गुफ्तगु होगी, लेकिन खुलासा ये जन्नत तो बहुत खुदा का फर्ज है, ये हमारी जहमतों का सिला नहीं है। मोमिन के आन की कीमत नहीं है जन्नत, ये खुदा का की हिदायत है। आए अंसार का गिरोह कहा यार चलो खुदा हमारे लिए जन्नत की जमानत है। आगे हल्लाती कहने पैगंबर ने सर को झुका लिया, जमीन पर खत खाए चुने। मैंने पिछली दफा भी अर्ज किया था ये पैगंबर की पेटेंट बॉडी लैंग्वेज थी, एक लगा बंदा जिस्मानी रद्द अमल जब वो वही का इंतजार किया था। पैगंबर थोड़ी देर खामोश रहे, उसके बाद कहा कि ठीक है मैं एक चीज की जमानत लेता हूँ और जन्नत की जमानत देता हूँ। इंसान ने कहा यार चलो खुदा फरमाइए। कहा तुम किसी के आगे दस्ते तलब दराज नहीं हो, दस्ते तलब दराज। मैंने किसी जगह पर अपने सोशल मीडिया में कहा था, मोगी कहा क्रेडिट कार्ड होता हर जगह पर ही उठता। कभी ऐसा हुआ किसी खेलने वाले से कोच खरीदा, फिर बैग में से अपना एक क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसको दिखाने में देगा बाजी के क्या था? इसको दिखा रहा था चेयर जाती नाइए जाती थे बड़े बड़े स्टोर से कराची में जहाँ ये क्रेडिट कार्ड चलते भी हैं। खेलने वाले की बात क्या था, मोमी तो हाथ में उठता नहीं है सिवाय खुदा की बारगाह के, और यह खुदा की बारगाह कैसे किसी एक गिरागर कैसे दूसरे गिरागर से मांग सकते। और इमाम सज्जाद की दुआ का एक जुमला भी है कि मैंने नहीं देखा किसी गिरागर को दूसरे गिरागर से मांगते हुए इंसान बस कैसे अपने जैसे बहुत आज आगे आते हैं। कहा अंदाज असल अंदाज, मैं तुम्हें जमानत देता हूँ जन्नत की, लेकिन तुम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओ। कहा साल के गिरोह की ये कैफियत आ गई थी कि एक सवार ने प्यादा सवार के हाथ से ताजियाना छूट जाता है, प्यादे से कहना चाहता है ताजियाना, हाथ बढ़ाते हैं तो पैगंबर के साथ क्या हुआ एनर्जी आता है, नीचे उतरता है सवारी से अपना ताजियाना उठाकर बैठ कर चला जाता है। दस्तर खान लगा हुआ है वो पानी आपके पास के मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहती हूँ पानी, जैसे ही पानी के लिए हाथ बढ़ाती हूँ पैगंबर के साथ क्या हुआ एनर्जी आता है। कहा अंसार को गिरोह ने अपने इस अहद को निभाया अल्लाह तसल्ला। अलबत्ता यहाँ पर जिमन अदायगी वाजिबात और मुकदमात से परहेज अपनी जगह स्ट्रिक है, बाकी है बच्ची ऐसा नहीं कि हम सोते हैं पर्दा वर्दा सब छोड़ दे और ये काम शुरू कर दे, ऐसा इस खुशियाई भी नहीं रहता। हूँ जो जिम्मेदारियां हैं जो डूज है डोंट्स हमने तो अंजाम देना है, वो तो अपनी जगह पर बात की। ये तो एक अलग से रिवायत के अंदर बयान किया गया है। और आखिरी चीज जो पैगंबर ने सलमान फारसी से कही, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में रिवायत किया गया कि ना तवक्कोआत ना रखें। आपने मौला का वो जुमला पढ़ा होगा यकीनन, ये आखिरी जुमला नहीं है, ये लोगों से किसी चीज का सवाल ना करना उसके आगे ब्रैकेट में तवक्कोआत ना रखें। मेरा ख्याल है हम औरतें पाकिस्तानी माजरे की औरतें खून कम सर्कुलेट करते हैं तवक्कोआत ज्यादा, मतलब अभी हम घर वापस जाएंगे कुछ घरों में जवान साथ बची हुई है हमें तवक्को भी बगैर कहीं जाएंगे ना लोग देख लीजिए मेरे दुआ के दही बंद भी डेढ़ घंटे का पहले लेक्चर अपने लेक्चर कुछ नजर नहीं आ रहा, पहले एक बड़ा सा चाय का कप बना कर लाओ पीओ तो मेरे होश आवाज ठिकाने आए। अच्छा हमें तवक्कोआत होती है बहनों से भाभियों से भाइयों से बच्चों से, अच्छा फिर कभी कभी तो जरा फिर थोड़ा बेचारे उधेड़ उधर हो जाते हैं ना, औरतें वैसे हमेशा जवाब जाती है काम करने का वो ही होता है हमें घर बात है, लेकिन उन्हें तवक्को होती है कहे बगैर करती ना तो मजा आता। नहीं मैं भी कभी कभी अपने बच्चों से ऐसे प्यार में होते हैं बगैर कहीं करते तब तो वादा ना बस क्या है कि चाय मंगाई तो पहुंची चाय मंगाई या उन्हें क्या है कि कहा शरबत बना दो ये कर दो वो कर दो, अक्सर अमीरों के अंदर एक खाना होता है बगैर कहे करवाने का और बच्चों के अंदर कोई इरादा थोड़ी लगा हुआ है कि हमारे इस चीज का मूड हो रहा है, हम चाहते जैसे हम बच्चों की बगैर कहे रिक्वायरमेंट को समझते हैं बच्चे भी समझे, मजे की बात है ममता आपके अंदर है उस बच्चे के अंदर थोड़ी है। मैं आपको एक होमवर्क दूं, आप नेक्स्ट संडे तक एक आयत ढूंढ कर लाएं जहां औलाद से नेकी का हुक्म हो। कुरान बहुत सारी जगह पर माँ बाप से नहीं कहा हुक्म देते औलाद से नहीं देता, अंदर छुट करता ही नाम औलाद के साथ अपनी जान से ज्यादा प्यारा रखता है, लेकिन तवक्कोआत न रखे किसी से एक्सपेक्टेशन ऐसा इंसान दुख नहीं देते इंसानों से वाबस्ता तवक्कोआत होते हैं। मजे की बात है ना रखे ना दुख सहे खुश रहे भी हैप्पी हम भी खुश वो भी खुश जीव और जीने दो टाइप के फॉर्मूले घर में लिख कर लगा देने चाहिए। आखिरी जुमला का मुझे कहा कि जिक्र राहौल वाला कुवत अहदा बिल्लाह अली अजीब को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। ये खुदा के खजानों में से एक कदम है, बहुत ही प्यारा जिक्र। बकौल आगे अब्दुल्ला इमाम कानी के, कोई जिक्र ऐसा नहीं है जिसमें ऐसी ही तेजी हो जैसी इस जिक्र में शयातीन को भगाने के। बस उसे सबसे ज्यादा कितने उठे जिसे ख्याल दिन में हजार दफा आते हैं और झटकते हैं, और फिर हम अच्छा मजे की बात है मालूम, लाहौर को पूरा पढ़ते हैं, बहुत ही बदतरीन काम लाहौर लाहौर पूरा पढ़े लाहौर लाहौर अली नदी बल्कि एक शख्स में तो एक हजार दफा पढ़े तो उसका हज पे जाते हैं माशाल्लाह लाहौर 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 जब आप अपने लिए पढ़े तो मेरे भी विदा करिएगा कि मैं भी इंशाल्लाह हज पर चली जाऊँ। लेकिन ये सात चीजें मुझे आगे दो तीन चीजें बयान करनी थी, लेकिन पहले मैं सवाल देख लूँ, अगर सवाल ऐसे नहीं होंगे तो मैं जिम्मेदार उन चीजों को भी आपकी खिदमत में बयान कर दूंगी। सलावत पढ़े मोहम्मद हो एक सेकंड एक के अक्सर इसे महसूस होता है कि किसी ने मुंह रोज लिया, ये तो कोई आप किसी ऐसे से पूछे जिन्हें इनमें काबिल ख्वाब आता हो, वही आपको इस तरह के मसले का जवाब देगी। कभी कभार हमारी बच्चों के रिश्ते ऐसे आते हैं जो ये डिमांड करते हैं कि बच्ची पर्दा ना करे, या कभी ये मुश्किल होती है कि बच्चा हलाल नहीं कमाता तब क्या करे, तब तो जाहिर सी बात है चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत माजरत मैं आपने एक बात, मैं कुछ अर्सा पहले किसी बच्चे का जाने की तस्वीर लेने के फिर रही थी, जहाँ पर जाते जगह सिर्फ सैलरी पे बात उठ जाती थी, पढ़ता नहीं था, अच्छा था शक्ल सूरत का अच्छा था, उसका तस्वीर में तो अच्छा ही लग रहा था, मैंने उसको ऐसे नहीं देखा, जहाँ पर हम उसका सैलरी पैकेज बता देते मैं उसे कभी सोचा दिन में एक जीरो आगे मैं बढ़ा दूँ, बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों बातें सही है कि हम देख जो शायद सभी पढ़ते के ऊपर इतराज करें वो बाद में क्या करने देगा, जिसे अभी हलाल कमाने की फिक्र नहीं वो हमारी बेटी को भी जहन्नम में खुद तो जाएगा, जहन्नम में हमारे दादाजी को भी लेकर जाएगा। लेकिन अक्सर जगहों पर इशू दीन नहीं दुनिया पर, अक्सर इशूज पर यानी आप सोचते अच्छा पढ़ सके मैं कहीं बेटी की माँ हूँ कहीं बेटी की माँ हूँ, दोनों रवैयों में हमारा मयार जो है वो सिर्फ से दुनिया होता है। मैंने एक बार कहीं किसी मोमिना से कहा था, मैंने कहा तुम इस चक्कर में अगर रोटियां गोल हो तुमने वजू चेक किया हो बच्ची का, हम ये देखना चाहते ना कि कैसा पकाएगी कैसा घर को चलाएगी कैसा ये करेगी कैसा वो करेगी, जैसे हम चाहते जैसे घर में कदम होते सारे काम वाली की छुट्टी करवा दी जाए उनसे सारे काम करवाए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें दोनों साइडों से। लेकिन बहरहाल देखिए परवरदिगार आलम ने हमेशा याद रखे जब पैदा किया तो कब भी पैदा किया, हम कभी कभी नेमत को गवा देते हैं, अल्लाहुम्मा फिर दे तुम बोला थी तो भाई ये नेमत बदल जाती है, नेमत ही बदल जाती है। आगे हुसैन अंसारिया ने शर से बहुत प्यारे तस्करे किए हैं, कुछ गुनाहों के तस्करे किए हैं, कुछ गुनाह ऐसे तो नेमत को नेमत ले गई अल्लाह मैंने दे दी नेमत की लज्जत छीन ली अब क्या करूँ। मुझे किसी मरहूमा का एक बहुत अच्छा जुमला था मैंने उसे नसीहत के तौर पर अपने लिए लिख दिया, कहा जब खाना था जब दांत नहीं थे, उन्होंने सारी जिंदगी बेबती के साथ बहुत बहुत ज्यादा कसमा कुर्सी में बच्चों को पढ़ा था और कहा खाना है जब दांत था थे तब खाना नहीं, जब खाना है दांत नहीं दे रहे थे, बच्चे जूस ला कर रखते हैं बच्चे फ्रूट ला कर रखते हैं बच्चे गोश्त लोग पकवाते हैं बच्चे कहते हैं माँ खाओ, कोई माँ का गाँव में झाड़ू पोता क्या करते हैं। लेकिन हमारा गहुआ दुनिया से चली गई, लेकिन हकीकत है परवरदिगार ने हमारे लिए बहुत सारी नेमतें रखी हैं, हम कभी कभी फर्ज और वाजिब में क्या करते हैं, जबकि रूसे तो दोनों ही एक चीज है वजाहत थोड़ी सी, अगर फिर के अंदर कहीं है सखी मसाइल के अंदर है तो दोनों का एक ही, जैसे लाजिम और वाजिब दोनों एक चीज है, तौजे मजाए में लफ्ज़ ज़रूरी और वाजिब दोनों एक ही चीज़ है, अल्फाज का फर्क है वरना शरी मसले एक जैसे है, तो सुन्नत भी चाहे जिस तरह की कुछ फर्ज और वाजिब में फर्क होते हो वरना जो चीज़ वाजिब है वो आपका फर्ज भी बनती है। अलबत्त बाद जगह पर गुफ्तगू के दौरान फर्ज अखलाकी एतबार से जिम्मेदारी को शुमार किया जाए, मतलब मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं घर में रहने वाले सारे अखलाक खाने पीने का ख्याल रखूँ, लेकिन फिर नुकता निकाल से मेरी गर्दन पर कुछ भी वाजिब नहीं, खाते खाए नहीं खाते ऐसे पकाना पड़ता है सबकी पसंद का क्या करें भैया घर में रहना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना, हम खाते खिला कर तो खुश होते हैं अक्सर खवातीन तो स्पेशली बच्चों को, लेकिन बहरहाल वैसे कोई ऐसा फर्क नहीं है, मुझे घर से 11:30 बजे वजू करके जाना पड़ता है क्योंकि मैं तो पहले ही शिफ्ट हूँ और स्कूल में अक्सर पानी का मसला होता है तो जोहर की नमाज 3 बजे पढ़ पाती हूँ, खामनाई की मोकल में जाऊँ तो वाजिब नमाज के लिए वजू में वक्त ना हो तो क्या वजीफा है मेरा, नमाज अगर वजू टूटा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वजू टूट गया तो इतने से पानी से वजू, मैंने याद है लास्ट टाइम करके दिखाया था ये भी ज्यादा है इसे भी थोड़ा से किया जा सकता है, पीने का पानी तो कहीं कम नहीं था आप एक
हाँ
काफी समझम की छोटी बोतल होती ना, उसे पैर में गुजार दी सदे वाली रखे, इतना तो काम किया जा सकता है। यानी ये कोई ऐसा बड़ा पानी की कमी का मतलब कोई इतना दर्द नहीं होगा, सिर्फ वुजू में भी करना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं आप पहले वॉशरूम भी जाए। हाँ तो वो तो देखिए इतना तो स्कूल वालों को अरेंजमेंट करके रखनी चाहिए ना, लेकिन आप इतना मैं आपको बताऊँ तो जा आपने बात खवादी को देखा होगा काफी समझम की बोतल गुजार दी है में, कहीं टूट गया बात खवादी का इतनी देर रहता भी नहीं है, वुजू किया हर जगह घड़ी मुझे नमाज पढ़ रही है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आप रैपर की मुकम्मल है तो फिर तो अगर रैपर का ये मसला ऐसे बता रही, मुझे नहीं मालूम कि रैपर का ऐसा मसला इतना ही है, तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप उसे ये फिर आपको जिसने ये मसला बताया आप उन्हीं से तफसील पूछे और रेफरेंस मांगे कि मसला क्या है, ताकि आपको जरा उस मसले के आगे पीछे वाले मसलों से कभी कभी हमारे मसले का है उसी मसले के आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाए। बहुत आसानी से इशारा मैंने रैपर की तौजी तो बहुत ही खुलासा है, इतनी तफसील से जुजियात के साथ मसाइल लिखे। रैपर का मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने कह के तो फिर आप उनको वीडियो में बता दें ताकि उनकी कंफ्यूजन हल हो जाए, और अगर किसी का कोई सवाल नहीं तो आप फिर दावा ना ले लोगों को दिला है रब्बिल आलमीन। एक सलावत पढ़ें लोगों का।